ओम शांति। बाहर जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो, सभी हॉल में आ जाएंगे। हम सत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। नीचे ऊपर जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी जल्दी से जल्दी हॉल में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज का विषय नई सामाजिक व्यवस्था के लिए दृष्टि और मूल्य मीडिया की भूमिका। इस पर हम विशेष सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। आज संपूर्ण विश्व में, ये कहूं या आज पूर्ण भारतवर्ष में भी, वातावरण खींचातान, तनातनी या कहें गर्म वातावरण है। एक तरफ तो सूर्य देव अपनी गर्मी का कहर बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर देखें तो वातावरण की भी गर्मी है। सूर्य देवता की जो गर्मी है उसको तो कहेंगे कि मानो सूर्य देव की जो किरणें हैं, आग की लपटें चारों तरफ प्रकृति और मानव को झुलसा रही है। समाज की तरफ देखते हैं आंख उठा करके तो वैमनस्य टूटन अपनी चरम सीमा पर आकर सब कुछ बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे में आप सभी मीडिया मनीषी अपनी जिम्मेवारी का मन में एहसास लिए हुए प्रभु प्रांगण में, प्रभु दरबार में, ज्ञान सरोवर की शीतल हवाओं में आप पधारे हैं। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। मुझे आप सबको देखकर बाल्य अवस्था याद आ रही है। जो एक नन्हा सा बालक होता है, अपने माता पिता की गोद में जब आता है तो शीतल छांव का, शक्ति का, प्रेम का, खुशी का एहसास महसूस करता है। ऐसे में आप सभी भी भगवान के घर में, अपने माता पिता के घर में पधारे हैं, अपने घर में आए हैं। आप सबके चेहरे भी बयां कर रहे हैं कि ज्ञान सरोवर की इस शीतलता ने, भगवान के घर ने आप सबकी तन मन की थकान को हर लिया है। ठीक है ये बात? तो ऐसे में जब हम अपने मन को शांत चित कर लेते हैं, शुद्ध बनाते हैं, तो वो निश्चित तौर पे बड़े बड़े कार्यों को करने में समर्थ हो जाते हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ करें। बढ़ते हैं मंच सज्जा की ओर। इस सत्र में अनुभवी वक्ताओं को मैं आमंत्रण देना चाहूंगी। इन शब्दों के साथ, अपने को कण ना समझ, अपने को कण ना समझ, तू तो तालाब को हिला सकता है, नव तरंग की फैलाने की तू ताकत जिगर में रखता है, नव तरंग को फैलाने की तू ताकत जिगर में रखता है, कण कण से तो पर्वत है बना, तेरा सहयोग तो धरती पर स्वर्ग ला सकता है, तेरा सहयोग तो धरती पर स्वर्ग ला सकता है। तो मैं आमंत्रण दे रही हूं आज के प्रमुख अनुभवी दिशा देने के लिए तैयार हमारे अनुभवी वक्ताओं को, राजयोगिनी आदरणीय सरला बहन जी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आदरणीय राजयोगिनी शिवानी बहन जी, हमारे बीच आज राजस्थान के मंत्री भी मौजूद हैं, आदरणीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी, ब्रदर नेविल हॉजकिंसन जी, प्रोफेसर मान सिंह परमार जी, आदरणीय राजयोगिनी दीदी सुदेश जी, कुछ समय बाद पहुंचेंगे हमारे बीच भ्राता विशाल जेटवा जी, आदरणीय मीडिया विंग के हमारे चेयरपर्सन भ्राता करुणा जी, आप सभी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे और तालियों के द्वारा अभिवादन हम सब करेंगे। खुशी की बात है, मीडिया विंग के लाइव चैनल यूट्यूब चैनल दोनों पर यह कार्यक्रम लाइव जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी हमारे मेन सेशंस रहेंगे वो सब इसी तरह से लाइव जाएंगे। तो पुनः तालियों के द्वारा हम सम्मान करते हैं हमारे विशेष मंच पर आसीन विद्वज्जन महानुभाव अनुभवी जन, सबका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। कार्यक्रम की शोभा तभी होती है, या कहें तभी एक सच्चा आनंद आता है जब हम अध्यात्म की तरफ उससे शुरुआत करते हैं। सदमार्ग दिखाने वाला, सदबुद्धि देने वाला वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर, परमात्मा से विवेक प्रज्ञा बुद्धि का वरदान जन जन ऋषि मुनि तपस्वियों ने मांगा है। आइए हम भी अपने अंदर दिव्य बुद्धि, शांत चित्त, शांत मन ईश्वर की स्मृति से बनाएं और अपने अंदर ऊर्जा का आह्वान करें। चलिए जहां भी आप बैठे हैं कुछ क्षणों के लिए सीधा होकर के बैठेंगे, प्रभु स्मृति में बैठेंगे, साइलेंस का आह्वान करेंगे। प्रभु स्मृति के पश्चात बारी है सम्मान की, स्वागत की। मेरा अनुरोध है बहनों से, ब्रह्मा कुमारी बहनों से, आएंगे और मंच का सम्मान पुष्पों बैजेस के द्वारा करेंगे और मेरा आमंत्रण भ्राता आत्म प्रकाश जी, मैं उन्हें देख पा रही हूँ, वो वाइस चेयरपर्सन मीडिया विंग, आप भी आए अपना स्थान ग्रहण करेंगे भ्राता आत्म प्रकाश जी। और हम सब तालियों के माध्यम से सबका सम्मान करें। आतिथ्य सत्कार तो हमारी भारत की संस्कृति है, तो अवश्य प्यार से हम तालियों को बजाएं और साथ ही साथ ये सम्मान सिर्फ मंच का नहीं, आप सभी आए हुए भाई बहनों का, सबका सम्मान ज्ञान सरोवर में है। तो ये सत्कार सम्मान अपना भी जान, अपने लिए भी इस हार्मनी हॉल में ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत। तो अपने लिए भी तालियां बजाएं और इतनी बजाएं जो ज्ञान सरोवर गुंजायमान हो जाए। जब तक सबका आतिथ्य न हो जाए तब तक हम तालियां बजाते रहेंगे। आज का महत्वपूर्ण विषय नई सामाजिक व्यवस्था के लिए दृष्टि और मूल्य और इसके लिए मीडिया की भूमिका। आगे बढ़ते हुए बहुत सुंदर आगे बढ़ते हुए मैं स्वागत के लिए आमंत्रण देना चाहूंगी हमारे मध्य नन्हे कदम अपनी भाव भंगिमाओं को लेकर के तैयार हैं स्वागत और सम्मान के लिए, कुछ दिशा देने के लिए, कुछ मन की बात कहने के लिए। तो मेरा आमंत्रण रहेगा कुमारी सिमोनी चंडीगढ़ से जो पधारी हैं, उनको आमंत्रण दे रही हूँ। गीत के बोल हैं, चहक उठी है वादिया। क्षमा चाहती हूँ, सबसे पहले आमंत्रण दूंगी मैं आदि नृत्य कला डांस एकेडमी खड़गपुर से जो आए हैं। वो हमने अभी थोड़ी देर पहले शांति का अभ्यास कहें, अनुभव कहें, परमात्म स्मृति का अभ्यास कहें किया, वो आगे बढ़ाने के लिए हमें गणेश वंदना को लेकर के आ रहे हैं। अपने भावों को शुद्ध श्रेष्ठ बनाएंगे हम सब गणेश वंदना आदि नृत्य कला डांस अकेडमी के द्वारा खड़गपुर। मेरा अनुरोध है बच्चों से, मंच पर जल्दी से जल्दी अपने कदम बढ़ाएंगे, गणेश वंदना को लेकर के आए खड़गपुर के बच्चे।
जय देव जय देव।
बहुत बहुत शुक्रिया इन नन्हे कलाकारों का। हम सभी पुनः तालियों के द्वारा आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज का जो विषय है इन नन्हे कलाकारों का सम्मान हमारा मंच कर रहा है। आदरणीय सुदेश दीदी, शिवानी दीदी, संजय भाई जी सब मिलकर के आप सबका स्वागत धन्यवाद कर रहे हैं। अब आज के विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। विजन एंड वैल्यूज फॉर अ न्यू सोशल ऑर्डर, रोल ऑफ मीडिया। मैं तो यूं कहूंगी मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है और बड़ा प्रभावी प्रभाव डालने वाला, मानव मन पर, हृदय पर छाप छोड़ने वाला ये मीडिया सब पर कार्य करता है। तो समाज में चूंकि मीडिया का बहुत प्रभाव है, मीडिया द्वारा प्रसारित बातों का हमारे मन पर गहन असर होता है। इसी से व्यक्तित्व का निर्माण भी है। आदरणीय मंत्री महोदय हमारे मध्य पधार चुके हैं। तालियों के द्वारा आपका अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मेरा अनुरोध रहेगा बहनों से भी, वो आएंगे, मंत्री महोदय का सम्मान पुष्पों के द्वारा, बांझ के द्वारा, पट्टे के द्वारा करेंगे और हम आपका तहे दिल से अभिवादन तालियों के माध्यम से करते हैं। सभा से तालियां गुजारिश हैं, बजाते रहेंगे। हमारे बड़े दिशा देने के लिए हमारे मध्य आ चुके हैं। आपका अभिवादन ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बहनों के द्वारा ज्ञान सरोवर में हो रहा है। मैं पुनः अपने विषय पर आती हूँ। व्यक्तित्व का समाज, व्यक्तित्व का निर्माण, समाज का निर्माण मीडिया के द्वारा सहज होता है। तो समय की मांग है मीडिया ऐसी सामग्री दे जो मानवीय मूल्यों को जागृत कर दे, तभी तो समाज में बदलाव आएगा। और इसकी जिम्मेवारी को वहन करने के लिए आप सब हमारे मध्य पधारे हैं। तो पुनः आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, आज मेरी झोली में कहूँ, मेरे पास कहूँ, अनुभवी रत्नों की एक तरह से पूरा बहुत सारे रत्न हैं, उसमें से एक पहला रत्न मैं पेश करने जा रही हूँ हमारे बीच। आदरणीय सरला बहन जी हमारे मध्य हैं, आप यूं कहूँ गांभीर्य की प्रतिमूर्ति, कर्तव्यनिष्ठ जैसा नाम वैसी ही मूर्त हैं आप। आप स्वच्छ सरल हृदय की धनी हैं। आपने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में भी पब्लिक रिलेशंस एचआरडी मैनेजर के रूप में कार्य किया है। भेल मैगजीन की आप एडिटर रही हैं और वर्तमान में मीडिया विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपसे अनुरोध है, आप स्वागत अभिवादन भाषण वक्तव्य हमारे मध्य रखें। आदरणीय सरला बहन जी,
ओम शांति। सर्वप्रथम इस सृष्टि को चलाने वाले सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार सर्व आत्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा को हम सब मिलकर इस महान सभा में उपस्थित होने के लिए स्वागत करेंगे, सुस्वागत करेंगे, क्योंकि सबको बहुत बहुत प्यारा और सबके दिलों में बसने वाले अति अति प्रिय हमारे बाप के उपस्थित से उनके ऊर्जा लेकर ही हम इस महान सभा को सफलपूर्वक बना सकते हैं। कुछ क्षणों हम महसूस करेंगे उनके उपस्थिति। बुलाइए ऊंचे ऊंचे धाम परम धाम से इस साकार माध्यम द्वारा यहाँ दोनों उपस्थित करने की स्वागत करेंगे। विजन एंड वैल्यूज फॉर ए न्यू सोशल ऑर्डर इस थीम के अंतर्गत हम 3 दिन का इस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी रीति से हमारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और भगवान की शक्ति को लेकर के कैसे इस दुनिया में इस्तेमाल करना, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुभ आरंभ करने के लिए हमारे समक्ष बीच में आए हुए महानुभाव आज की इस सभा में स्पिरिचुअल आइकन के रूप में स्पिरिचुअलिटी को देश विदेश में फैलाते हुए बहुत बहुत शक्तिशाली जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हमारे प्यारे सुदेश दीदी जी को वेलकम करती हूँ। इसके साथ आज की जो इस सभा को मंत्रीगण भी आए हैं, उनको भी मैं स्वागत के रूप में इस सभा में इनवाइट कर रही हूँ। हमारे मीडिया की पूर्वज, जिससे ये पूरा मीडिया का जो कॉन्फ्रेंसेस हो, सेमिनार हो, मूल स्तंभ है, आधार है हमारा मीडिया की चीफ करुणा भाई जी और आत्म प्रकाश भाई जी, इन दोनों को मैं दिल से स्वागत कर रही हूँ। एट द सेम टाइम आई इन्वाइट द मोस्ट पावरफुल स्पीकर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। जीवन की गति विधान लाखों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन करके हर एक के दिल में बसे हुए हमारे प्यारे शिवानी बहन को भी मैं स्वागत कर रही हूँ। आई इन्वाइट ब्रदर द्विवेदी जी, आप हर कॉन्फ्रेंस में आते हो, वार वार ऐसे ही आते रहे, यू हैव बिकम पार्ट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज मीडिया फैमिली। आई इन्वाइट यू वेरी हार्टिली। परमार जी, आप भी शामिल होते हो हर एक कॉन्फ्रेंस में, आपको भी हमारे बहुत बहुत स्वागत है। और नेविले भाई जी, ही इज फ्रॉम यूके ब्रदर, आई हैव बीन एबल टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू फॉर द 2 days। योर स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस राइट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम टू इंडिया इज गिविंग लॉट ऑफ सपोर्ट टू ऑल दोज हु एंड बेनिफिट ऑल दोज हु आर हियर फ्रॉम मीडिया एंड रिलेटेड फील्ड्स। आई वेरी हार्टिली वेलकम यू ब्रदर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। एंड माय डियर सिस्टर चंद्रकला जी, हु इज वेरी पावरफुल इन कंडक्टिंग द प्रोग्राम्स, आई इन्वाइट यू ऑल्सो सिस्टर। एंड मेरे सामने बैठे महान विभूति कहूँ, महान भाव कहूँ, और हीरोज ऑफ दिस दुनिया कहूँ, क्योंकि भगवान के दिल में आपका जो स्थान है मैं जानती हूँ, क्योंकि भगवान के कार्य बहुत बहुत बड़ा कार्य है। His role is to transform the entire world into a very ideal new world. उस world को तैयारी करने में हमारे पास बहुत sections of the society है, women है, youth है, judiciary है, scientists है, engineers है, इन सबको लेकर around 20 wings we have in Brahma Kumaris. बट भगवान को इस दुनिया में, मैं एक सीक्रेट आपसे शेयर करना जरूरी है, आपसे बहुत प्यार है, आपसे, आप मीडिया वालों से, इसलिए आप सबको चुन चुन के यहाँ बुलाया है, लाया है, उनके घर में बिठाया है। द वेरी पर्पस ऑफ हिज कॉलिंग यू हियर इज इस दुनिया में परिवर्तन करने के लिए बहुत पावरफुल मीडियम है मीडिया। हर एक के जीवन मीडिया से आधारित है, मीडिया से सब कुछ हो सकता है। एक नेता जी सकता है, वॉट एवर हैपन्स, एदर इट कुड बी फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव, मीडिया हैज ए ग्रेटर रोल टू प्ले इन दिस वर्ल्ड। भगवान को भी आपकी बहुत बहुत जरूरत है, इसलिए आपको बुला के इन 3 दिनों में भगवान आपसे क्या कराना चाहते हैं और कैसे करना है, कैसे भगवान के ऊर्जा लेकर के इस दुनिया में आप दुनिया वालों को कैसे फायदेमंद कराना है, इस विषय पर कई सेशंस के द्वारा, स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल सेशंस के द्वारा आप सबको जाना जाएगा। तो इस रीति से आप एक एक को भगवान ने बुलाकर यहाँ पर लाए हैं, तो आपको एक एक को मैं भगवान के तरफ से, हमारे पूर्वज जो सीनियर यहाँ जो यज्ञ के पूर्वज हैं उन सबके तरफ से, मीडिया विंग के टीम के तरफ से आप सबको स्वागत है, दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप यहाँ पर आए हो, बहुत बहुत ले सकते हो, हर एक सेशन में आपके लिए बहुत बहुत लाभान्वित करने वाली चीजें रखे हैं। मेरा एक विनती है आप सबसे, प्लीज डू नॉट मिस एनी सेशन। यू हैव कम हियर बिकॉज मीडिया वालों ने बहुत थके हुए हैं, क्योंकि दुनियावी बातों को सुनना, देखना, पढ़ना, इसमें बहुत थक गए हो। फिर भी इन तीन दिनों में यहाँ जो आपको बोला जाता है, प्लीज पार्टिसिपेट एंथुसियास्टिकली, गो वेरी डीपली इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू एंड टेक द ऑप्टिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। इसलिए आप हर एक सेशन मिस नहीं करें, प्लीज, इट इज मेड एंड मॉड्यूल्ड ओनली फॉर यू, काइंडली आप उसको अटेंड करके लाभ ले लीजिए, क्योंकि इससे दुनिया लाभ लेती है। इसी एक विनती से आपको और आपके परिवार के सब सदस्यों को मैं अभिनंदन करते ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सरला बहन जी। भगवान का प्यार और प्रभु ऊर्जा, हम जब इन सत्रों को सुनेंगे, गहराई में जाएंगे, मनन करेंगे, महसूस करेंगे, तो आगे बढ़ते हुए मैं फिर नन्हे कदमों का आह्वान करने जा रही हूँ। कुमारी सिमोनी चंडीगढ़ से आई हैं, जो अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा हम सबका अभिनंदन करेंगी, जिनके बोल हैं गीत के, चहक उठी है वादियां। तो मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कुमारी सिमोनी, आए और अपना नृत्य प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी सिमोनी। और अब मैं आगे कदम बढ़ाती हूं अपने रत्नों में से एक दूसरा प्रख्यात रत्न आपके सामने रखने जा रही हूं। शायद आप समझ गए होंगे, जाने माने प्रख्यात पत्रकार भ्राता प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आप प्रख्यात पत्रकार, संपादक, लेखक, अकादमिक प्रबंधक, मीडिया प्राध्यापक, क्या क्या कहूं, अनेक जिम्मेवारियों का वहन, आपने महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का वहन किया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में 15 वर्ष तक जनसंचार विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुल सचिव और प्रभारी कुलपति रहे। आप भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप संस्था से काफी वर्षों से लगाव रखते हैं, जुड़ाव है, आपसे अनुरोध है दिशा प्रदान करें। भ्राता प्रोफेसर द्विवेदी जी,
ओम शांति। आप सभी बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण सभा में, शुभारंभ सत्र में, सबसे पहले सृष्टि के नियंता और सर्वात्माओं के पिता परमपिता सुख परमात्मा की पावन स्मृति और उनका आशीर्वाद लेते हुए यह शुभारंभ सत्र प्रारंभ हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मीडिया के क्षेत्र में हमारा लगातार मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय वी के करुणा भाई, आदरणीय बहन बी के शिवानी जी, जिनको सुनकर अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, आदरणीय बहन बी के सरला जी, प्रोफेसर डॉक्टर मानसिंह परमार जी, बी के आत्मप्रकाश जी, बहन बी के चंदकला जी, शांतनु जी, निकुंज भाई, बी के चंदा बहन, कोमल भाई, डॉक्टर बी के रीना जी, अनीता दीदी और आप सब देश के अनेक हिस्सों से पधारे हुए माननीय सम्मानित पत्रकारगण, मीडिया प्राध्यापकगण, भाइयों और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि ब्रह्म कुमारीज ने इस बार नई सामाजिक व्यवस्था के लिए दृष्टि और मूल्य क्या हो इस पर बातचीत का आयोजन किया है। अगले 2-3 दिनों तक आप इस विषय पर बातचीत करेंगे और देखिए कि जो समय चुना है वो भी बड़ा अद्भुत है। नारद जयंती है आज, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे और ठीक 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस है, जब कलकत्ते से उदंत मारतंड का प्रकाशन हुआ था और देश में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जो ये पत्र निकाला उसमें मीडिया को उद्देश्य घोषित किया कि मीडिया का उद्देश्य क्या है, और अपना जो प्रथम संपादकीय लिखा उस प्रथम संपादकीय का शीर्षक था हिंदुस्तानियों के हित के हित। मतलब ये जो हमारे जो काम है ये हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के हित के लिए समर्पित होना चाहिए। उन्होंने मीडिया के पहले अंक में ही ये हमें दिशा दे दी कि हमको करना क्या है। और जब हमारे प्रथम संपादक ने, हमारे आदि संपादक ने हमको रास्ता बता दिया तो उससे भटकने का हमें कोई कारण नहीं, वही है। और आप देखिए कि आज नारद जयंती है। नारद जी के बारे में हम जानते हैं, उनको आदि पत्रकार ना भी आप कहें तो प्रथम संचारकर्ता तो कहते ही, प्रथम संचारक है, पहले कम्युनिकेटर है। जैसे आदरणीय शिवानी दीदी भी पत्रकार नहीं है पर कम्युनिकेटर है, क्योंकि आपके संचार से, आपके संवाद से लोगों की जिंदगी बदल गई, लोग आपके संचार और संवाद से प्रभावित होते हैं। और नारद भी एक अप्रतिम संचारक है, अप्रतिम संचार करता है। संचारक की विशेषता क्या है, वो एक स्थान पर रहता नहीं, वो प्रवास करता, सतत प्रवास करता है। नारद जी सतत प्रवास करते, तीनों लोकों का प्रवास करते हैं, और उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य लोक मंगल है। फिल्मों में, सिनेमा में उनकी छवि अलग बना दी गई, उनको चुगलखोर, झगड़ा लगाने वाला बता दिया गया, पर वो झगड़ा लगाने वाले नहीं है। वो जो भी काम कर रहे हैं उससे लोक मंगल होता है और सब उन पर भरोसा करते हैं। वो अकेले व्यक्ति हैं जिन पर पक्ष का व्यक्ति भरोसा कर रहा है, प्रतिपक्ष भी भरोसा कर रहा है। आप ये सोचिए कि राहुल गांधी भी उन्हें मोहब्बत करें और मोदी भी उन्हें अपने दिल के करीब माने। वो कहीं भी जाते हैं सब उनको प्यार करते हैं, उनको गंधर्व प्यार करते हैं, उनको देवता प्यार करते हैं, उनको राक्षस प्यार करते हैं, सब उनकी बात सुनते, ध्यान से सुनते हैं कि नारद जी आए हैं, जरूर हमारे हित की कोई बात करेंगे, लोक मंगल की बात करेंगे। ऐसी प्रामाणिक जिंदगी उनकी थी, और इस नाते पत्रकार को प्रामाणिक होना चाहिए और उसके जीवन का उद्देश्य लोक मंगल होना चाहिए। और आप सब तो देवतुल्य लोग हैं, इतने सुंदर स्थान पर बैठे हैं, कुछ सुंदर संकल्प लेकर के जाएं, कुछ शुभ संकल्प लेकर के जाएं, यही संगठन का उद्देश्य है। ब्रह्म कुमारी को क्या लेना देना, एक आध्यात्मिक संगठन है, आध्यात्मिक यात्रा पर है, उसकी आवश्यकता क्या है? पत्रकारों को जुटाना, कभी इंजीनियर्स को जुटाना, कभी राजनेताओं को जुटाना, कभी डॉक्टर्स को जुटाना, वो अलग अलग 20 भिंग के लोगों को जुटाते क्यों है? उद्देश्य क्या है? कई बार मुझे भी समझ में नहीं आता था कि आखिर क्यों बुलाते हैं, आप हमें क्या सिखाएंगे? पत्रकारों को तो लगता है कि हमको क्या सिखाओगे, हम तो ऑलरेडी ज्ञानी लोग हैं, पर सिखाना नहीं, सिखाना नहीं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके काम में हम नहीं सिखाते, आपको गुण नहीं सिखाते, पत्रकारिता कैसे करनी है नहीं बताते, पत्रकारिता किस लिए होनी चाहिए हम ये बताते, किस लिए होना, पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, हम पत्रकारिता नहीं सिखा रहे, बिल्कुल हमारा उद्देश्य नहीं। पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है ये आपको पता है, काम क्या है आपको पता है, पर पत्रकारिता किस लिए होनी चाहिए, किसके लिए होनी चाहिए, पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, संचार का उद्देश्य क्या है, एक अच्छा संदेश कैसे लोगों की जिंदगी बदल सकता है, लोगों को संबल दे सकता है, एक आत्महत्या करने के लिए जा रहा व्यक्ति पुनः अपने जीवन में वापस लौट सकता है, इसलिए पत्रकारिता होनी चाहिए। और आप देखिए लोक मंगल का मतलब क्या है, लोक मंगल में सिर्फ मनुष्य नहीं आते, हमारे आप जैसे इस पूरी सृष्टि का मंगल हो, इसमें जो भी कुछ है, इवन वनस्पतियां, जीव जंतु, सबका मंगल हो, यह लोक मंगल है। लोक बहुत व्यापक है, वो लोक अंग्रेजी के फोक का अनुवाद नहीं है, इसलिए उस लोक को समझिए, उस लोक की शक्ति को समझिए। और हम तो भारत के लोग हैं, भारत का मतलब ही है जो ज्ञान में रत है, निरंतर लोक मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो सोचता रहता है, नई नई प्रविधियां सोचता है। इसलिए हमारा ज्ञान अपने लिए नहीं है, हमारा जो भी ज्ञान है वो वैश्विक ज्ञान है, हमारे जो भी आविष्कार है वो वैश्विक है, हमारा जो भी विचार है वो वैश्विक है, विश्व को सुख देने वाला है। और इसलिए हमारा संचार, हमारा संवाद लोक मंगल के लिए होना चाहिए। एक आत्मविश्वास पैदा हो समाज के अंदर, संबल मिले समाज को, इस प्रकार का हम करें। और हमारी आज जरूरत क्या है, हमारी समस्या क्या है, हम आत्मदैन्य से घिरे हुए, हमें अपनी ताकत का पता नहीं है। हम सब भारतीयों ने हनुमान जी को अपना आदर्श बना लिया है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है उनको उनकी शक्ति का भान कराना पड़ता था, बताना पड़ता था तुम किसके पुत्र हो और तुम क्या कर सकते हो। इसलिए आज भारतीयों को झकझोर कर जगाने का काम किसको करना है, मीडिया को करना है। उनको बताना है कि आप अमृत पुत्र हैं, आप नष्ट होने वाली संस्कृति नहीं है, आप दुनिया को जीवन देने वाले विचार हैं, इसलिए आपको इस विश्व का नेतृत्व करना है, विश्व शांति के लिए, लोक मंगल के लिए आपको काम करना है। हम विश्वगुरु थे, किस लिए विश्वगुरु थे? हम विश्वगुरु इसलिए थे, ये पूरी दुनिया के लोग हमसे ज्ञान लेने के लिए आते थे। आज हालात क्या है, मैंने आंकड़े देखे, हो सकता है डाटा में कुछ गड़बड़ हो, आजकल डाटा भी फ्लक्चुएट किया जाता है। 50 से 60 हजार विद्यार्थी दुनिया के हमारे यहां पढ़ने के लिए आते हैं, और हमारे यहां 7 से 10 लाख विद्यार्थी दुनिया में प्रवास कर रहे हैं, जो दुनिया में जिन देशों में जा रहे हैं नाम लेने में भी शर्म आती है, आखिर उनको वहां क्या मिलता होगा, किस तरह से करते होंगे। आप उज्बेकिस्तान में हमारा लड़का पढ़ने के लिए जा रहा है, हमारा बच्चा यूक्रेन पढ़ने के लिए जा रहा है, आखिर हुआ क्या है इन अमृत पुत्रों को, धरती के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के सर्जकों को, आखिर क्या हुआ है कि उनके बच्चे विदेश में जाकर के ऐसे ऐसे देशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिनका औचित्य मैं कम से कम समझ नहीं पाता। 7 से 10 लाख विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं, ये हमें उल्टा करना है इसका, इसके लिए हमको ताकत प्राप्त करनी पड़ेगी, फिर से उस तरह की संस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी जैसी संस्थाएं हमारे लोगों ने बनाई थी। नालंदा के बारे में हम जानते हैं, तक्षशिला के बारे में जानते हैं, कितने हजार विद्यार्थी दुनिया भर से आकर के वहां पढ़ते थे। और इसलिए समाज का आध्यात्मिकरण करना, क्योंकि क्यों हम बड़े थे, क्यों हम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ इसलिए हम थे क्योंकि हम एक आध्यात्मिक समाज थे, पर पीड़न में आनंद प्राप्त नहीं करते थे, दूसरे के सुख का विचार करके हमने ज्ञान विज्ञान की तमाम सरणियों में काम किया, तमाम अनुशासनों में काम किया। समाज का आध्यात्मिकरण करना पड़ेगा, मीडिया का भारतीयकरण करना पड़ेगा। जब मीडिया का भारतीयकरण करने की मैं बात कहता हूं तो इसके संदर्भ को आप समझिए। मीडिया की उत्पत्ति पश्चिम में हुई, पश्चिम में इसके विचार तय हुए, पश्चिम ने तय किया कि अगर जो है कुछ नकारात्मक होगा, कुछ दुर्घटनापूर्ण होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ झगड़े होंगे, कुछ लड़ाइयां होंगी, कुछ अशोभन होगा तो खबर बनेगी, अन्यथा खबर नहीं बनेगी। इसके मूल में गड़बड़ है। हमारा शब्द क्या है? हमारा शब्द संचार और संवाद है। संवाद कभी नकारात्मक नहीं होता, सुसंवाद नाम का कोई शब्द नहीं, ध्यान रखिए। संवाद से समस्याओं का हल निकलता है और खबरों से समस्याएं खड़ी होती हैं। खबर किस आधार पर गढ़ी जाती है, उस खबर के आधार को बदलने की जरूरत है, उसको भारत की परंपरा से जोड़ने की जरूरत है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा तब हम खबर बनाएंगे, कुछ गड़बड़ होगी तो हम खबर बनाएंगे। यहां ज्ञान गंगा बहती रहे वो हमारे लिए समाचार नहीं है, पर ये छत भसक जाए तो हमारे लिए समाचार है। ये देखना पड़ेगा कि हमारा दर्शन क्या है, हमारा चिंतन क्या है, हम किस लिए इस क्षेत्र में आए हुए। और इसलिए सार्वजनिक संवाद में शुचिता और मूल्यबोध बहुत आवश्यक है। आज आप देखते हैं हमारा सार्वजनिक संवाद कितनी कड़वाहटों से भरा है। हम स्टूडियो में कैमरा ऑफ होते कितने प्यार से मिलते हैं, गले मिलते हैं, खूब दोस्ताना करते हैं, अलग अलग दलों के प्रवक्ता दोस्तों की तरह रहते हैं। स्क्रीन पे कैमरा ऑन होते ही हम कैसा लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि हमको संवाद नहीं चाहिए। उस संवाद से हमें विवाद खड़ा करना, विवाद से वितंडावाद खड़ा करना है, और वितंडावाद खड़ा करने के नाते हमारी टीआरपी बढ़ती है। इसलिए हम वैसे नहीं है पर हम प्रक्षेपित ऐसा करते हैं जैसे एक दूसरे के शत्रु हैं, जबकि हम शत्रु नहीं हैं। मैंने अनेक प्रवक्ताओं को देखा कितने प्यार से वो एक मोहब्बत से एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे इस कैमरा ऑफ होता है और बाहर स्टूडियो से एक ही गाड़ियों पर बैठ के भी कई बार आते हैं। पर आप देखते हैं कि छवि क्या प्रक्षेपित, छवि ऐसी प्रक्षेपित की जा रही है जैसे सारा हिंदुस्तान और उसके हमारे जो राजनेता हैं वो आपस में लड़ते भिड़ते रहे। ऐसी बात नहीं है, ये हिंदुस्तान का असल चेहरा नहीं है, ये मीडिया के द्वारा प्रक्षेपित किया गया चेहरा है। मीडिया ने ऐसा स्थापित किया है कि आप स्क्रीन से समाधान नहीं पा सकते, यहां तो विवाद रचना है और विवाद के आधार पर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना है। मुझे लगता है कि इस आधार को बदलने की जरूरत है। अगर हम इस आधार को नहीं बदलेंगे तो हम बड़े संकट के सामने होंगे। दूसरा जो संकट है बहुत बड़ा, क्लोजिंग ऑफ माइंड्स का, वैचारिक साम्राज्यवाद का, वैचारिक दास्ता का, कि हम कब उभरेंगे। आज हमें 75 साल तो आजाद हुए हो गए, हमें अपनी जमीन पे खड़े होकर यह सोचना चाहिए कि अब हम वैचारिक दास्ता से मुक्त हों, उपनिवेशवाद की जो काली छाया है उससे मुक्त हों। हमारे वेश में, परिवेश में, खान पान, शिक्षा में, जुडिशरी में, प्रशासन में, सब जगह कहीं ना कहीं जो पश्चिमी मूल्य हैं वो अभी भी धसे पड़े हैं और हम उनको श्रेष्ठ भी मानते हैं। और इसलिए हमें भारत को अगर नेतृत्व करना है, भारत को अगर दिशा दिखानी है तो इसको तैयारी हमको करनी पड़ेगी। हम कई बार अपने समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। कोई मुल्क, कोई देश, कोई समाज जिस हालात में है उसके लिए स्वयं जिम्मेदारी, ध्यान रखिए। हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। आजादी के 75 सालों के बाद अब हम नहीं कह सकते साहब अमेरिका और पाकिस्तान के नाते हमारे हालात ऐसे, हम नहीं कह सकते। ये दोष देने का समय नहीं है, ये एक समय कुछ रचने का है, कुछ करने का है। और इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव के जो संकल्प है कि आने वाले जो 24-23 साल हमें हमारे बचे हैं आजादी के स्वर्ण जयंती, जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, अपनी सब समस्याओं से हमें निजात पाना है। हम विलाप करने की स्थिति से अलग हों, हम रोते न रहें, सरकारों के भरोसे बैठे न रहें, समाज की शक्ति का जागरण करें, समाज में सकारात्मक विचारों का जागरण करें। और इस संबल को देने का काम सबसे अधिक अगर कोई कर सकता है मीडिया के भाई कर सकते हैं। इसलिए सेमिनार, इसलिए संवाद हो रहा है कि एक नई समाज रचना में, एक नई व्यवस्था खड़ी करने में मीडिया कैसे समाज को ताकत देने वाला बन सकता है, कैसे संबल देने वाला बन सकता है, कैसे वो दिलों को तोड़ने वाला नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला बन सकता है। इसलिए मूल्यों पर आधारित मीडिया इस मीडिया विंग का संकल्प है। मूल्यों पर आधारित मीडिया बनाएंगे। करुणा भाई जैसे लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी और लगभग 80 के दशक में काम प्रारंभ हुआ मीडिया विंग का, तब से लगातार ये काम हो रहा है, लगातार ये संवाद हो रहा है, स्थान स्थान पर हो रहा है। मुझे अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिला जिसका एक ही उद्देश्य है कि हम मीडिया को मूल्यों के आधार पर खड़ा करें, मूल्य आधारित समाज की रचना में सहयोगी बने, सार्वजनिक संवाद में शुचिता और मूल्य बोध को बढ़ावा दे, पत्रकारिता अध्यात्म के धरातल पर खड़ी हो, समाज आध्यात्म के धरातल पर खड़ा हो, समाज सुसंवाद का वाहक बने और एक सुंदर समाज रचना इस संगठन का उद्देश्य है और हम सबका भी यही उद्देश्य है। हम आखिर मीडिया में क्यों है और मीडिया क्यों, मीडिया, साहित्य, संस्कृति की हमारी जितनी प्रदर्शन कलाएं हैं, जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट है, वो क्यों है? हमारे जीवन में सुख और आनंद देने के लिए, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अभी दो नृत्य यहां पर हुए, उन नृत्यों का संदेश क्या है, उनका यही संदेश है कि हमारी जिंदगी में आनंद हो। इसलिए हमने भगवान गणेश की स्तुति से प्रारंभ किया, वो सर्व मंगल के देवता है, वो हमारी जिंदगी को सुखों से भरते हैं, आनंद से भरते हैं। और हमारे देवता, हमारे ऋषि, हमारे मुनि यही हमें संदेश देते हैं। हमें कहीं वो आध्यात्मिकता और भौतिकता का निषेध नहीं सिखाते। हमारे यहां आध्यात्म और भौतिकता का निषेध नहीं है, आनंदपूर्ण जीवन ही जीना है, सुखपूर्ण जीवन जीना है, संयमपूर्ण उपभोग करना है। ये हमारी मर्यादाएं तय होनी चाहिए। और इसलिए मीडिया के जो मित्र हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये नारद जयंती को शुरू हुआ जो संवाद है, जो आने वाली 30 मई को जब अपने स्थानों पर पहुंचेंगे, वो हिंदी पत्रकारिता दिवस का दिन होगा, बड़े सुंदर संध्या स्थल पर हम इसे प्रारंभ कर रहे हैं और समाप्त भी कर रहे हैं। मैं आप सबसे ये आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब एक तो इस संगठन के साथ जुड़े, राजयोग का अभ्यास करें, अपनी जिंदगी को सुखों से भरें। मुझे पता है कि आपकी जिंदगी कैसी। मैं स्वयं 14 साल दैनिक पत्रकारिता में रहा हूं, अखबारों में काम किया मैंने, और मुझे पता है कितने तनावों, कितने दबावों के बीच में, अल्प आर्थिक स्थितियों के बीच में, कम संसाधनों के बीच में आपको काम करना पड़ता है। आपके जीवन के भी तनाव है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। इन सबको करते हुए जब आप राजयोग से जुड़ते हैं, जब आप किसी ध्यान योग प्राणायाम की परंपरा से जुड़ते हैं, आपके जीवन में सुख आता है। अपने अंदर आप झांकते हैं, और जब आप अंदर झांकना प्रारंभ करते हैं, बाहर के जो दर्द हैं, बाहर की जो कठिनाइयां हैं, बाहर के जो संघर्ष हैं, वो समाप्त तो नहीं होते पर सरल हो जाते हैं। उनको आप साक्षी भाव से देखना प्रारंभ कर देते हैं। जो कर्ता होने का आपका भाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है कि मैं करूंगा, मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं मंत्री बदल दूंगा, मैं विधायक बनाता हूं, मैं सांसद बनाता हूं, ये जो भाव है, मैं कलेक्टर बदल सकता हूं, ये भाव खत्म होता है। आप फिर साक्षी भाव से रिपोर्ट करते हैं। आप में कर्ता भाव कम होता, आपका साक्षी भाव, का दृष्टा भाव प्रबल होता है, और यही ईश्वर से जुड़ना है। और आप सभी सभा में आए हैं, इतनी कठिन यात्राएं करके दूर दराज से इस गर्मी के मौसम में आए हैं। मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी का। अगर मैं आपके शब्दों को कुछ इस तरह पिरो दूं, जो लोग सफर में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफिले भी उन्हीं के पीछे चलते हैं। आप आगे आते, दुनिया आपके पीछे चलती है। जरूर कदम हम आगे बढ़ाएंगे। मीडिया में सकारात्मक परिवर्तन, बदलाव ही सत्युगी दुनिया बना सकता है। ये वैचारिक परिवर्तन कहूं, वैचारिक दासता से मुक्त कहूं, दिलों को जोड़ने वाले आप बने, तोड़ने वाले नहीं। आप तो दिशा देने वाले हैं, दिशा से हटाने वाले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी का। आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात, एक और कार्य के लिए कदम आगे बढ़ाती हूं, और वो कदम है दीप प्रज्वलन की ओर। हमें यही सोचकर दीप प्रज्वलन करना है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये गीत सचमुच हमें प्रेरित करता है कि हमारे मन की ज्योत हम जगाएं, अनेकों के हृदय की ज्योत जगाएं, और हृदय की ज्योत ऐसी जगे जो दुनिया की ज्योत जग जाए, दुनिया पुनः वो समाज स्वर्ग बन जाए, जो भारत की संस्कृति है, नर नारायण हो, नारी लक्ष्मी हो, वही फिर से बन जाए। तो मेरा मंच से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, और सभा के लिए जो भी स्पीकर्स हैं हमारे, उनको मैं आमंत्रण करूंगी। पहले मंच दीप प्रज्वलन करेगा, बाद में नीचे दीपक रखे हैं, आप नीचे ही दीप जगाएंगे। मंच के लिए मैं कुछ विशिष्ट संस्था के मीडिया से जुड़े हुए कार्यकारी को आमंत्रण देना चाहूंगी। शांतनु भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर आप मंच पर आएंगे, निकुंज भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर आप भी मंच पर आएंगे, चंदा बेन मधुबन कोऑर्डिनेटर मंच पर आएंगे, कोमल भाई आप भी मंच पर आए, ईला गोयल डेप्टी डायरेक्टर नेशनल मास ऑफ कम्युनिकेशन, मास एंड कम्युनिकेशन आप भी मंच पर आकर दीप प्रज्वलन में सहयोग देंगी। और दीप जब मंच का हो जाए तब हमारे स्पीकर्स नीचे रखे हुए दीप उन पर प्रज्वलन करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
ओम शांति। पहले ऊपर वाले स्टेज में जो दीप प्रज्वलन होगा, उसके बाद दूसरे वाले जो भी जितने स्पीकर थे सेशंस के, सारे स्पीकर वो नीचे वाले कैंडल्स में आएंगे, और हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर सभी नीचे कैंडल्स में दोनों तरफ रखिए। फोटोग्राफी होने के बाद फिर ये कैंडल्स जलाएंगे।
सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। देते जाओ मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ।
नीचे अभी भी दीप प्रज्वलन का कार्य चल रहा है
इस संसार।
अब जल्दी जल्दी इसको पूरा करेंगे, जलाएं
प्रभु को।
सबसे अनुरोध है नीचे दीप प्रज्वलित करना शुरू करें।
बसा है हर धड़कन में जग उजियारा होगा प्रेम।
शुरू करें।
सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
मेरा अनुरोध रहेगा इस साइड वाले जो दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। और दीप प्रज्वलन करके अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद आप सब उनको सुन सकेंगे जिनका एक इंतजार आपके हृदय में है, इसलिए आप जल्दी जल्दी इसको पूरा करेंगे और स्थान ग्रहण करेंगे। बैठे, सभी बैठे। और अब मैं कदम आगे बढ़ा रही हूं, बहुमूल्य रतन आपके बीच। मेरी एक शब्द से ही आप समझ गए होंगे, आदरणीय राजयोगिनी शिवानी दीदी हमारे बीच, हमें दिशा देने के लिए तैयार। और इनके परिचय की तो शायद जरूरत नहीं है, आप वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक आपने किया है, आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। आपकी तरफ से मैं यही कहूंगी, आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, आए हो किरदार जमी पर जब निभाने, कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो जो जमाना आपका मिसाल दे, जो जमाना आपका मिसाल दे। कठिन से कठिन समस्या का समाधान होता तो बड़ा आसान है, समस्याएं कठिन लगती हैं, कठिन से कठिन समस्या का समाधान होता बड़ा आसान है, सिर्फ अपने मन के दर्पण को साफ करने की जरूरत होती है। शुभ भाव रखो, शुभ चिंतन करो, बस फिर देखो कैसे खुशियां ही खुशियां चारों तरफ बिखरती हैं। आदरणीय शिवानी दीदी जी, तालियों के साथ आपका आह्वान करते हैं दिशा प्रदान करने के लिए।
जब हम इस कॉन्फ्रेंस की थीम को देखते हैं कि न्यू सोशल ऑर्डर, तो हम सबको याद आना चाहिए कि 22 जनवरी 2024 को देश ने मिलकर एक संकल्प किया था। क्या संकल्प था वो? क्या संकल्प था? वो संकल्प था कि राम राज्य, अब पूरा कीजिए संकल्प, क्या संकल्प था? राम राज्य आना है। अयोध्या से हुआ ये संकल्प आप सब ने पूरे देश में हर देशवासी तक पहुंचाया, और सिर्फ देश में नहीं विश्व में संदेश को पहुंचाया कि भारत में राम राज्य आना है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में राम राज्य को आना है? कौन कौन स्वीकार करता है? नहीं, ताली नहीं, स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, ओके। 4 महीने हो गए, वैसे 4 महीने हो गए ना, आज 24 मई हो गए। कुछ बदला? देश राम राज्य की तरफ शिफ्ट हुआ कि और ही दिन ब दिन रावण राज्य बढ़ता जाता है? हम वेट कर रहे हैं कि राम राज्य आना है। अब अपने आप से पूछना होगा कि राम राज्य आना है या राम राज्य लाना है, क्या करना है? आना है तो बहुत आसान है, बस वेट करना है, आएगा, जब आना होगा तब आएगा। और अगर आना नहीं लाना है तो फिर वो हमें करना होगा। तो किस किस को लगता है राम राज्य लाना है? ओके, और फिर वो किसने लाना है? हमने नहीं होगा। अब इसमें कहना होगा मैंने लाना है। जैसे कोई काम हो तो हम कहेंगे सब कर लेंगे, तो सब वेट करते हैं, सभी कर लेंगे, कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। सब नहीं, हम नहीं, ये एक वो संकल्प, वो जिम्मेवारी है जहां मैं कहना जरूरी है। बाकी जगह पर तो हम मैं काफी बार कहते हैं, मैंने ये किया, ये काम मैंने किया, लेकिन राम राज्य लाना है ये संकल्प में हमें मैं करना होगा कि मैंने लाना है। अब हाथ उठाइए कौन संकल्प करने के लिए रेडी है। मैंने लाना है, ओके, वेरी गुड। तो अगर मैंने लाना है तो फिर तो बहुत अच्छा और बहुत सहज भी है। एक तरफ है रावण राज्य और दूसरी तरफ है राम राज्य। ये संसार में रावण राज्य है या राम राज्य है वो हमारे संस्कारों से दर्शाता है, क्योंकि भारत की संस्कृति में हजारों सालों से ये एक स्पिरिचुअल लॉ है जो हम सबको पता है कि संस्कार से संसार बनता है, संस्कार से संसार बनता है। तो अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये संस्कार ही बढ़ते जाएंगे तो रावण राज्य और रह जाएगा, और अगर हमें राम राज्य लेकर आना है तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन आएगा। काम की जगह पवित्र, क्रोध की जगह शांति आएगी, लोभ की जगह संतुष्ट आएगी, मोह की जगह प्यार आएगा, और अहंकार की जगह रूहानियत आएगी, सोल कॉन्शियसनेस आएगी। अब इसको कौन करेगा? तो उसमें हमें मैं कहना होगा कि मैं। एक छोटी सी कहानी है जो हम यहां बहुत बार सुनते हैं और बहुत अच्छी भी लगती है कि जंगल में आग लगी थी, एक छोटी सी चिड़िया सागर के पास जाकर अपनी चोंच में पानी भरती थी और आग पर जाकर डाल देती थी, फिर सागर के पास जाती थी, चोंच में पानी भरती थी और आग पर डाल देती थी। तो किसी ने देखते हुए कहा कि हे चिड़िया, तुमको क्या लगता है तुम्हारी इस चोंच भर पानी से क्या ये आग बुझ सकती है? तो चिड़िया ने कहा, इतिहास जब लिखा जाएगा तब 3 तरह के लोग होंगे, एक जिन्होंने आग जलाई, दूसरे जो आग को जलता हुआ देखते रहे, और तीसरे जिन्होंने आग बुझाई। तो चिड़िया ने कहा, मेरा नाम आग बुझाने वाली साइड पर होगा, मैं इसलिए आग बुझा रही हूं। हमारा नाम किस साइड होगा? हमारा नाम इन तीनों में से कौन सी साइड पे होना चाहिए? आग जलाने वाले, आग को जलता हुआ देखने वाले कि भाई जल रही है हम इसमें क्या कर सकते हैं, या आग बुझाने वाले, कौन सी साइड पे होगा? अच्छे से बोलो, आपकी भी तो आवाज जानी है, आज लाइव जा रहा है हर जगह। भारत देश भी तो जाग कर देखे ना कि भारत की मीडिया कह रही है, यहां तो हर वीकेंड पे एक वर्क होता है। पिछले वीकेंड पे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स थे, उसके दो वीकेंड पे आईटी प्रोफेशनल्स थे, इसके बाद ट्रांसपोर्ट विंग आएगा, उसके बाद हर फ्राइडे सैटरडे संडे एक वर्क है, और हर वर्ग यही कहता है कि हम आग बुझाने वाली साइड पे होंगे। लेकिन आग तो तब बुझेगी जब मीडिया वर्ग कहेगा कि हम आग बुझाने वाली साइड पर होंगे, ये तभी वो अग्नि बुझने वाली है। बाकी सबके कहने से ये हो नहीं रहा है, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है, तो हमें संस्कार बदलने होंगे। और संस्कार किससे बनते हैं? जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं, और सुनते पढ़ते जो हम देखते हैं वो वर्ग आप है। तो अगर भारत देश ने या विश्व ने भी, हर आत्मा ने अगर जो वो सुनते पढ़ते देखते हैं, अगर उसमें पवित्रता शांति सुख प्यार संतुष्टता ये संस्कार आ गए जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं, तो आत्माओं के संस्कार बदल जाएंगे, और जब संस्कार बदल जाएंगे तो संसार बदल जाएगा। हम सब स्वास्तिक बनाते हैं, अपने सामने चिन्ह लेकर आइए। स्वास्तिक का चार भाग है, राइट? चार भाग है। जैसे समय एक चक्र है, कुछ देर पहले हम सुबह मिले थे 6:30 बजे, वो सुबह थी, 12 बजने वाले हैं, दोपहर शुरू होने वाली है, थोड़ी देर के बाद शाम, और उसके बाद रात्रि हो जाएगी। लेकिन रात्रि के बाद हमें पता होता है कि सुबह फिर से होगी। बीच में एक समय आता है जिसको 3-4 बजे का समय कहेंगे, जो बहुतों के लिए रात्रि का समय होता है, और कुछ लोगों के लिए वो जगने का समय होता है। आजकल भी घरों में उस समय पर कुछ लोग गुड नाइट कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। समय तो वही होता है, सोने कौन जा रहा है और जगने कौन जा रहा है, उसके लिए वो समय डिफरेंट होता है। तो इसी तरह सृष्टि पर ये जो समय चल रहा है, बहुतों के लिए ये अज्ञान की नींद में सोने का समय है। उन्होंने तनाव, चिंता, गुस्सा, काम विकार, लोभ, ईर्ष्या, इन सबको नॉर्मल कहकर अज्ञान की नींद में हम सो रहे हैं। और हम सब हैं जो यहां आज इकट्ठे हुए हैं, हम अपने जागरण अवेकनिंग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं कि वो सोच खत्म, वो संस्कार खत्म। मुझे राम राज्य लाना है तो पवित्रता सुख शांति प्यार से ही ये आने वाला है, तो इसलिए जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन हम वही कंपेयर करते हैं कि मेरे आसपास के लोग क्या दिखा रहे हैं, तो इसके लिए स्वास्तिक को सामने लाने की बहुत जरूरत है। 1 मिनट हाथ रखिए। स्वास्तिक का पहला हाथ कैसे है? ऐसे है। ये क्या कर रहा है हाथ? ऐसे है ना, पहला वाला हाथ, ये हाथ ऐसे, ये क्या कर रहा है? दे रहा है। अर्थात जब सृष्टि की सुबह थी, जो अभी दीदी ने कहा सत्युगी दुनिया थी, तो हर आत्मा कैसी थी? देने वाली आत्मा थी, और इसीलिए हर आत्मा को देवी देवता कहा जाता है, और इसीलिए सत्युग त्रेता युग की जो समाज था उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। वो धर्म नहीं, वो समाज था जो आत्मा के धर्म पर जीते थे, इसीलिए उनको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। देवी देवता अर्थात हर आत्मा देने वाली आत्मा थी। तो सत्युग में हाथ ऐसे था, त्रेता युग में हाथ किधर गया? थोड़ा सा नीचे चला गया, मतलब देने की क्षमता थोड़ी सी क्या हुई? घटती गई। द्वापर युग में हाथ ऐसे हो गया, ये क्या करना शुरू कर दिया हमने? ऐसे वाली आत्मा कैसी वाली आत्मा बन गई? खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, चाहिए वाली आत्मा बनी। सृष्टि की ये शाम थी जिसको द्वापर युग कहते हैं। और चौथे युग में हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया। कैसे वाला हाथ हो गया? ऐसे वाला हाथ हो गया। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम मार रहे हैं। किसको मारते हैं हम सबसे ज्यादा? अपने आप को मारते हैं संकल्पों से। एक बार जल्दी से हाथ रखेंगे। 1, मैं आत्मा ही, इसीलिए हम स्वास्तिक बनाने के बाद बिंदी लगाते हैं। पहले कौन से युग में बिंदी लगाते हैं? ऊपर। मैं आत्मा पहले कहां थी? यहां थी, देने वाली। फिर मैं आत्मा कहां गई? नीचे। फिर मैं आत्मा कौन सी आत्मा बनी? लेने वाले, आज मैं आत्मा कौन सी आत्मा बन गई हूँ, ये कलयुग, इसके बाद हाथ कैसे जाना है, हाथ पकड़ के रखिएगा, इसके बाद हाथ कैसे जाना है, बस ऐसे जाना है, इसको करिए एक बार, कलयुग से सत्ययुग बस ऐसे बन जाएगा, ऐसे की जगह ऐसे, ऐसे की जगह ऐसे, ऐसे की जगह ऐसे। अब अगर जब हम अपना वीडियो बना रहे हो, अपना लेख लिख रहे हो, हम कुछ भी पूरे देश में पूरे विश्व में फैला रहे हो, अगर सिर्फ इतना सा याद रहे कि मुझे ऐसे वाला कंटेंट नहीं, मुझे ऐसे वाला कंटेंट बनाना है, तो मैं चिड़िया अपना वो धर्म निभा रही होंगी कि मैं आग लगाने वाली नहीं, मैं आग को जलता हुआ देखने वाली भी नहीं, मैं आग को बुझाने वाली आत्मा, मैं आत्मा राम राज्य लाने में अपना कर्म अपने धर्म के आधार पर कर रही हूँ, वो हमें आज यहाँ से प्रतिज्ञा करनी है। नहीं तो सोमवार आएगा, हम सब वापस चले जाएंगे और फिर हम वैसी वाली दुनिया को ही अगर और बढ़ाते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए भले हमारे आसपास सब लोग वो न भी कर रहे हो, चिड़िया को अकेले ही आग बुझाना शुरू करना पड़ेगा। कलयुग का अंतिम समय ये समय है कि एक ही चीज हमारी रक्षा कर सकती है और वो चीज है हमारे अपने कर्म। लेकिन अगर हमने सबके कर्म देखकर दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या लिख रहे हैं, दूसरे क्या छाप रहे हैं, दूसरे क्या बना रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरों की कितनी व्यूअरशिप है, कितने लाइक्स है, तो हमारा हाथ ऐसे वाला हाथ बनता है, तो हमारा हाथ फिर ऐसे वाला नहीं बनता है। इसीलिए कलयुग कलयुग और कलयुग और कलयुग और रावण राज्य बनता जा रहा है। तो सिर्फ ये समाचार तो दुनिया को नहीं देना ना कि भारत में राम राज्य आने वाला है, दुनिया को अब ये सिखाना भी तो पड़ेगा कि राम राज्य कैसे लाना है, क्योंकि कलयुग जब अति को पहुंचता है तो कलयुग का अंत तो होना ही है, और कलयुग का अंत अर्थात सत्ययुग की शुरुआत, स्वर्णिम भारत की शुरुआत, और वही स्वर्णिम भारत राम राज्य है जिसका सब आह्वान कर रहे हैं। लेकिन उसको लाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्योंकि वो खुराक सबको आपसे मिलती है। जो समाज में हो रहा है वो तो सबको बताना होता है, लेकिन बताते हुए भी इंटेंशन ये वाली रखिए कि मुझे सबको कुछ देना है, मुझे सबसे क्या लेना है वो नहीं, मुझे सबको देना है। इसीलिए हर कार्य की शुरुआत दिया जलाकर होती है। दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होता है। दिया मतलब जब तक आत्मा दिया रहे, देने वाली आत्मा रहे, जीवन हमेशा शुभ होगा। लेकिन देने की जगह चाहिए चाहिए पर गए तो फिर वो दिया बुझ जाता है, और अगर दिया बुझ जाए तो हमें पता है क्या होता है। इसीलिए जैसे ही दिया बुझ जाए, ज्ञान का घी डालकर वो दिए को फिर से जलाना है, और चाहिए 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 लिए 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 वाले लेफ्ता नहीं बनना है। परमात्मा कहते लेफ्ता नहीं बनना, दाता बनना है। सबके सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए मुझे क्या करना है, वो इंटेंशन अगर हम यहां से रख कर जाएंगे तो अपने व्यक्तिगत कर्मों में भी देने वाले, और फिर अपनी जो सेवा है उसमें भी इंटेंशन यही रहे कि मुझे हर भारतवासी को, हर विश्व के हर आत्मा को सिर्फ देना है, वो जब रहेगा तो हम इतनी सारी चिड़िया जब मिलकर आग बुझाने वाली साइड पर होगी तो फिर रावण राज्य हारना ही है, क्योंकि रावण भी हमारे अंदर ही है और वो देवताई संस्कार भी हमारे अंदर ही है। हमें अपने अंदर के राम को जागृत कर अपने अंदर के रावण को खत्म कर मर्यादा पुरुषोत्तम वाले संस्कार लाकर इस सृष्टि पर सत्ययुग लाना ही है और भारत को स्वर्णिम भारत बनाना ही है। तो इस 3 दिन के अंदर आप सब कुछ सिर्फ सुनेंगे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सारी ये वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करेंगे, क्योंकि परमात्मा तो इस सृष्टि पर अवतरित हुए ही हैं, और हम सबको तो संपूर्ण निश्चय है कि ये कलयुगी सृष्टि बहुत जल्दी परिवर्तन हो सत्ययुग बनने वाली है। लेकिन हम सबकी अब चॉइस है कि हमें दोनों में से कौन सी साइड पर खड़ा होना है, आग लगाने वाली या आग बुझाने वाली। वो अपनी अपनी साइड सिलेक्ट करके अपने धर्म को अपने कर्म मिलाकर खुद वो सत्ययुगी आत्मा बनकर हर एक को वो बनाना, आज वो हमारी जिम्मेवारी है। तो 3 दिन खुद के लिए तो लेंगे, लेकिन 3 दिन ये थोड़ा सा मंथन चले बैकग्राउंड में कि जो सब कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती, वो मैं नहीं कर सकता, सब आग लगाने या सिर्फ आग को जलता हुआ देखने की साइड पर खड़े हैं, बुझाने वाली साइड पर कम होते हैं, लेकिन बुझाने वाली साइड पर चाहिए भी बहुत थोड़े, सब नहीं चाहिए सत्ययुग बनाने के लिए, बहुत थोड़े चाहिए। और जैसी दीदी ने कहा, परमात्मा ने आपको चुना है, आप अपने संस्कारों से यहाँ आए हैं, और इसीलिए सत्ययुगी दुनिया हम सबको मिलकर बनानी ही है। बहुत शुक्रिया, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय बहन शिवानी जी का, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी अपने धर्म और कर्म को जागृत करना है, जगाना है, आग बुझाने वाला बनना है, देखने वाला भी नहीं बनना है। और यही मंथन 3 दिन अंदर में रहे कि मुझे क्या करना है, मुझे आग बुझानी है, नई दुनिया लानी है, यही प्रेरणा स्वयं में भी जागृत करनी है, अनेकों में करनी है। और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे बीच विराजित है राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर बाबूलाल खराड़े जी। आदरणीय बाबूलाल खराड़े जी का मंच पर बहुत बहुत प्यार से अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आप बहुत सरल हृदय के हैं और सदा सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी विशेषता है कि विकास में आगे कदम बढ़ाना है और सबको आगे ले चलना है। तो आपसे अनुरोध है, आप आज के इस विषय पर हमें दिशा देंगे। सम्माननीय आदरणीय बाबूलाल खराड़े जी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर।
आज के इस नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में मंच पर विराजमान, बहुत ज्यादा नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि समय कम है और आप लोगों को अभी भोजन का समय हो रहा है। भोजन से पहले का सत्र और भोजन के बाद का सत्र थोड़ा कठिन होता है, इसलिए ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं रहता है। मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, बहुत विद्वान लोग हैं, मैंने इनका जब इनके जीवन को देखा है, इनके उपलब्धियों को देखा है, और उनके बीच में एक मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में खड़ा होकर के बोल रहा हूं तो मुझे भी 10 बार सोचना पड़ेगा। और एक मीडिया के लोग देश भर में, अभी हमारे पूर्व वक्ता देवंडा जी ने कहा था कि सतयुग में भी मीडिया था, नारद जी यही काम करते थे, और नारद जी काम करते थे, नारद जी का काम आपके जुम्मे है। एक बात आपने कही थी कि नारद जी झगड़ा करवाते थे, वो झगड़ा नहीं कराते थे, अपनी बात इधर से उधर पहुंचाते थे, कहां क्या हो रहा है, इवन भगवान तक भी बात पहुंचाते कि यह ही हो रहा है, इसको कैसे ठीक करना है। वो काम आप कर रहे हो, और आप कर रहे हो तो कुछ अंश तो वो हमारे में भी आएंगे ना, नाराजी करते वैसा, और वो दिखता भी है। हम लोग राजनीति में काम करते हैं तो आप लोगों से कई बार हम प्रेज करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, आप हमको बचने नहीं देते हो, और आप एक अपने शब्द से भूचाल ला देते हो, फिर राजनीति के लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं ना, आप तो दूर से ही देखते हो। आप एक व्यक्ति को जमीन से आसमान में उठाते हो, और जब उस व्यक्ति में अभिमान आ जाए, घमंड आ जाए, तो एक आपके मीडिया में उसके लिए जो छापने से वो धराशायी हो जाता है, उसका अभिमान टूट जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, और चौथे स्तंभ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोगों को कई बार कई चीजें दिखती नहीं है, और मीडिया के लोग काम करते मैं देखता हूं, अनुभव करता हूं। हम लोग नहीं पहुंचते हैं वहां पर, मीडिया पहुंचता है। वहां क्या हो रहा है वो सरकार के सामने लाने का प्रयास करते हैं, और उस संकट में भी आप जाते हैं कि जहां पर दंगा हो रहा, फसाद हो रहा है, हत्या हो रही है, वहां पर भी हमारा मीडिया के व्यक्ति जान में जोखिम डाल करके वहां का भी चित्र लेकर के आता है और दुनिया के सामने रखने का प्रयास करता है। आपको धन्यवाद दूंगा मैं, लेकिन हमें निष्पक्ष बनना पड़ेगा। आप निष्पक्ष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी दो तीन बातें कही थी, यह देश सोने की चिड़िया भी था, विश्व गुरु भी था, ये हमने नहीं कहा, ये दुनिया ने कहा है। और अभी हमारे जिक्र किया था, हमारे यहां दुनिया के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे, तक्षशिला और नालंदा का आपने जिक्र किया, और यहां का सनातन संस्कार को लेकर के, संस्कृति को लेकर के दुनिया को गले नहीं उतर रहा था। वो चाहते थे कि हम लोग विश्व कल्याण की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रहता है, जिसके कारण से हम नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाते हैं। सांप तो जहर ही उगलता है ना, लेकिन हमारा स्वभाव है, हमारा संस्कार है, नाग पंचमी के दिन जहर उगलने वाले सांप को भी हम दूध पिलाते हैं। वो संस्कार हमारा है और हमें नहीं। हमारे देश में कई प्रकार के आक्रमण हुए सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए, किस रूप में आप सब जानते हैं, मुझे बहुत ज्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं मिटा। इसलिए यह कहते हैं कि इस धरती पर स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। कहीं पर किस किस रूप में जाते होंगे, पैगंबर के रूप में जाते होंगे, संदेश वाहक के रूप में जाते होंगे, लेकिन ये धरती है जहां पर साक्षात भगवान अवतरित होते हैं। और इसीलिए यह महापुरुष जन्म हुए। अभी हमारा जिक्र आया था, दीदी ने कहा था कि रामराज्य की कल्पना, ये रामराज्य शब्द बहुत आसान है बोलना, लेकिन वैसा करना बहुत कठिन है। रामराज्य का मतलब क्या है, आप और हम सब जानते हैं। भगवान राम बड़े हुए, राजा दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया था, वो काम करने की स्थिति में नहीं थे, उनके मन में कल्पना आई कि भाई अब मैं थोड़ा सा उम्रदार हो गया हूं, अब बड़े बच्चे का राज्याभिषेक करना चाहिए, वैसा उस समय की व्यवस्था थी। एक तरफ राज्याभिषेक की तैयारी होती है, राजा का आदेश है, सब जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है, खुशी का माहौल है, और एक मंत्रा जाकर के कई के कान में फूंक लगाती है, देख तू दासी बन के रहेगी, तेरा वो वचन मांग राजा दशरथ से। और जाती है और जब वचन मांगती है तो उसने खुशी खुशी का माहौल है, मांग क्या चाहती है मैं दे दूंगा, उनको पता नहीं था क्या मांगेगी। और उस समय उन्होंने कहा कि राम जी को 14 साल का वनवास और भरत का राज्याभिषेक होगा। एक बाप के साथ क्या बीती होगी, उस समय क्या परिस्थिति होगी, राजा दशरथ बेहोश से हो जाते हैं। भगवान राम को पता लगता है, वो जाते हैं, पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं कि मैं आपके वचनों को पूरा करूंगा, और माता के कई के चरण स्पर्श करता है, निकल जाता है। और भाई देखिए, उसको पता लगता है कि राम जी को 14 साल का वनवास हुआ मेरी मां के कारण, और मेरे कारण। वो दौड़ते हैं पीछे और जाकर थे रुको आपको नहीं जाना है। उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा। वो आग्रह करते हैं, उन्होंने विनय करते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं। प्रतिज्ञा पूरी करनी है। और जब भरत जी कहते हैं कि मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपकी जूतियां दे दीजिए, जूतियां रख करके 14 साल तक शासन करते हैं, ये उदाहरण कहीं देखने को मिलता है तो भारत मिलता है, इसलिए हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। आज हम लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं। अगर हमें सत्ता प्राप्त करनी है तो किसी भी हद तक हम जाएंगे, लेकिन मेरे को कुर्सी चाहिए। किसी भी स्तर की भाषा मुझे बोलनी है वो बोलूंगा, लेकिन मुझे कुर्सी चाहिए, इससे रामराज्य आ सकता है क्या? आजकल चुनाव हो रहे हैं, आप वातावरण देख रहे हो ना। एक आपने सुना उस चिड़िया का, बिल्कुल सत्य है, लेकिन वैसा हमको करना पड़ेगा। आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वाले का इतिहास में, उस इतिहास में हम नाम लिखाना चाहते हैं, तो वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। हमारे यहां चार शास्त्र हैं, चार वेद, चार हमारे पुरुषार्थ हैं और चार हमारे ये है, क्या बोलते हैं, क्या वेद तो हो गया, आश्रम, चार आश्रम और चार हमारे ऋण लेकर के हम पैदा होते हैं, वैसा हम करते हैं क्या? आज आपने मीडिया में देखते हो, सबसे पहले पहला आश्रम है 25 साल तक हम विद्या अध्ययन करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, उसकी पालना होती है क्या? सबसे पहले आप अखबार लेंगे, टीवी का बटन खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नाबालिग बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, यह संस्कार मेरा है क्या? कहां गए हमारे चार आश्रम? उसकी पालना होती क्या? नहीं होती। हमारे पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी पालना होती है क्या? जब हमारे चार ऋण है, उन चार ऋणों को हम पूरा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के कारण वैसा हम हो गए, क्योंकि आपने देखा होगा आज तो हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं कि मेरे ये सामान्य मकान है तो बंगला अच्छा बनना चाहिए और अच्छे गाड़ी घोड़े आने चाहिए। अभी कहा ना, भोगवाद, मोह, ये सारी चीजें आई कहां से? हमारे में था क्या? हमारे यहां तो ये है कि कपल जा रहा था, रास्ते में चल रहा था, पत्नी पीछे थी, पति आगे था, उसको रास्ते में एक सिक्का दिखा, उसने देखा पत्नी देख नहीं ले, इसलिए उसने अपने पांव से मिट्टी डाल दी, और पत्नी भी उससे आगे तेज थी, उसने दृश्य देखा, उसने कहा कि यह मिट्टी कैसे डाली है? तो पति कहता नहीं 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 नहीं, ऐसे ही डाल दिया। आज भी कहते हैं ना, हमारे जो स्त्री है ना उसका महत्व बहुत ज्यादा है, उसका सम्मान होता है, बाकी जगह होता नहीं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यहां सम्मान होता है। और आदमी स्त्री से कमजोर होता है, उसने जिद की तो कहा कि यहां पर एक सिक्का पड़ा था, तू देख लेगी तो उठा लेगी, तेरे मन में कहीं लालच आ जाएगी, इसके लिए मैंने मिट्टी डाल दी है। उसका जवाब क्या था? पराया धन मिट्टी के समान है। हम लोग चाह रहे हैं कि मेरा बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, चलो बंगले बना लो, दो चार कमरे बना लो, 5-25 कमरे बना लो। आपको सोने के लिए रात भर ये लुढ़क लुढ़क जाओगे, सभी कमरे में सोओगे क्या? सोने के लिए हमको एक कमरा चाहिए, फिर ये सारा करते क्यों है? वैसा होता है, और वो करने के लिए आदमी किसी भी हद तक जाता है। मुझे तो कैसे पैसा कमाना है, बाकी चीज भाड़ में जाए, ये समाज में दिखती है। इनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। और हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। आज मैं ब्रह्मा कुमारी में मुझे सौभाग्य मिला और आपके बीच में बोलने का सौभाग्य मिला। धार्मिक प्रवृत्ति की लोग बहुत कम बचे, और आज से नहीं उस समय से है। पहले भी यही होता था, धार्मिक आचरण करने वाले कम ही लोग होते थे और अधर्म पे चलने वाले ज्यादा ही थे, लेकिन ताकत भी ज्यादा थी, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती थी। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप और हम करेंगे नहीं करेंगे, राम राज्य आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। ये समय की आवश्यकता है और दुनिया आज भारत की ओर देख रही है, भारत निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी ऊंचाई को छू रहा है। जो हमारे कल्पना थी, हमारा लक्ष्य था कि हम भारत मां को परम वैभव पर पुनः पहुंचाएंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि हमने कहा ना, एक अंतरा बोलते हैं, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में ये मांगे मां वरदान, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आप सब लोग के दर्शन हुए, देश भर के आप मीडिया के लोग हैं, आप सब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा और अच्छा करें, क्योंकि हमारी कोई कमियां हैं तो वो भी सामने लाए। क्योंकि कई बार हम लोगों को हमारी कमियां दिखती नहीं, हमको सब अच्छा अच्छा दिखता है, क्योंकि हरा दिखता ही है राजनीति वाले लोगों को, और कुछ तो दिखता नहीं है। और अपने बीच अपने लिए कोई अगर दो शब्द गलत छाप दे तो उसके प्रति नाराज हो जाते हैं, बाहे चढ़ाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मैं सामान्य से परिवार में जन्मा हुआ हूं और मैं अक्सर से मीडिया की बातों की पालना भी करता हूं, कोई कमियां हो तो उसको दूर करने का भी प्रयास करता हूं। मैंने शायद 5 मिनट ज्यादा ले लिए होंगे, तो मैं माफी चाहूंगा। जय भारत, धन्यवाद,
बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री महोदय का, जिन्होंने हमें बहुत सी प्रेरणाएं दी, हमें अपनी संस्कृति को सामने रखते हुए आगे बढ़ना है, अपने कर्म को जगाना है, जो वास्तविकता है हमारे यहां की देश की, उसी को सामने लाना है, अर्थात सत्य को सामने रखना है, प्यार प्रेम को लाना है। ये सत्य है कि राम राज्य को आना है, उसी कार्य में लगना है। पुनः शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए मैं उस बहुमूल्य कोहिनूर को आपके सामने रखना चाहती हूं, जो हमारे बीच विराजित आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी हैं। आप संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका, जिस ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में आप सभी बैठे हैं, आप उसकी निदेशिका के रूप में कार्यरत हैं। आपके लिए जो भी कहूं थोड़ा है, बाल्यावस्था से आप संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप राजनीति शास्त्र में आपने एमए किया है और साथ ही साथ 1974 से सेवाओं के लिए आपका भ्रमण शुरू हुआ और 72 देशों से भी अधिक देशों में आपने भ्रमण किया और सेवाएं दी। आपके लिए यही कहना चाहूंगी, मुस्कान लिए चेहरे में, लगनशील आप हृदय से, निरंतरता और गतिशील हैं, आप चेतना के अग्रदूत हैं, चेतना के अग्रदूत हैं। और यूं कहूं, अत्यंत प्रेरक स्पष्ट वक्ता हैं। आपकी आपके अंदर सच्चाई, आपके अंदर की सहृदयता देखते ही बनती है। तो मैं आपसे अनुरोध करने जा रही हूं आदरणीय सुदेश दीदी जी से कि आप हमें ब्लेसिंग्स प्रदान करें। और सभा से अनुरोध है, बिल्कुल।
ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विराजमान मेरे अति स्नेही सम्माननीय भाई बहने और सामने सभा में बैठे हुए, ऐसा ही कहें, विश्व को जागृत करने वाले आत्मिक शक्ति किस प्रकार से बढ़े, वास्तव में जो मन की भावना है कि रामराज आए, विषय चल रहा है दिशा दिखाने की, तो बराबर हम कहते हैं रामराज आएगा और आना है जरूर, और लाना है हमको ही लाना है, हम ही राज रामराजवासी थे। यथा राजा तथा प्रजा, राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसर नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। स्वधर्म क्या है, सत धर्म क्या है, हम भारतवासी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे संस्कारों में स्वधर्म की छाप लगी हुई है, अथवा ये कहें कि सत धर्म की स्थापना करने का प्रैक्टिकल में कार्य भारत क्या क्या कहलाता था। भारत स्वर्ग कहलाता था, सुख धाम कहलाता था, वैकुंठ कहलाता था, पुण्य भूमि कहलाता था, और भूमि वही है, और उसी भूमि पर रहने वाली मनुष्यात्मा भी इसी सृष्टि पर है। तो ऐसी सृष्टि जिसमें फिर से वही हमारी वृत्ति में क्या हो, हमारी दृष्टि में क्या हो, हमारे संस्कारों में वो कर्तव्य आए कैसे, सचमुच अगर देखा जाए तो राज किनको करना है। राज करना कोई दूसरे पर राज करने की बात नहीं, पर पहले स्वयं पर स्वराज्य करना है। किसी भी चीज को लाने के लिए, जैसे आपने सुना कि वास्तव में संस्कार तो आत्मा में ही है ना, और आत्मा है क्या, जब तक मैंने अपने आप को आत्मा निश्चय नहीं किया, विचार व्यवहार संस्कार परिवर्तन कैसे होंगे। आपने आज सवेरे सुना परिभाषा अथवा आत्मा है क्या, हम चैतन्य शक्ति हैं, चैतन्य आत्माएं सृष्टि पर राज करने वाली हैं, आने वाली पीढ़ियां भी इसी दुनिया पर राज करेंगी। राज्य था और फिर से वो राज्य आना है जरूर, इस सृष्टि का एक नियम है। हमने सुख का अनुभव किया है, शांति का अनुभव किया है, जीवन में प्रेम पवित्रता सुख का अनुभव किया है, और वो कम होने लगा फिर इच्छा हुई अनुभव करें, परंतु वो हम आत्माओं के आत्मा का संस्कार है। तो पहले तो ये समझना है कि हम सचमुच जल्दी जल्दी लाएं या डिले करें रामराज को लाने की, हम अपने जीवन से कैसे प्रैक्टिकल में अपनाएं और वो दिशा अपने आप को दिखाएं पहले, दूसरे को दिशा दिखाने से पहले हर एक आत्मा को, इंडिविजुअल को, अपने आप को दिशा दिखानी है। दशा स्थिति ऐसी आ चुकी है जिसको राहु की दशा कहा जाता है, अब वृक्षपति की दशा बिठानी। वृक्षपति बीज रूप परमात्मा को कहा जाता है, कल्याणकारी को कहा जाता है, और वास्तव में ये कहानी हमारी ही है, हमारे पूर्वजों की है, हमारे देवी देवताओं का है, की है, या ये कहें ये हम सबकी, आपकी और हमारी कहानी है। तो पहली बात तो थोड़ा सोचें कि हम फिर से कुछ डिले तो नहीं कर रहे रामराज को लाने में। स्टोरी सिर्फ एक आत्मा की नहीं है, इस साकार सृष्टि पर हम देखें, इस कर्म क्षेत्र पर कोई एक राजा नहीं है, राम राजा राम प्रजा। राम राजा है तो प्रजा भी राजा है, तो हर एक आत्मा इस कर्म इंद्रिय रूपी कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाली इस अयोध्या स्थान पर युद्ध के मैदान पर वास्तव में देखा जाए तो थोड़ा आध्यात्मिकता से देखें तो हर एक आत्मा दशरथ है, राजा है इस शरीर रूपी रथ का। हम सब रथी हैं, दशरथ ये शरीर रूपी रथ है। आत्मा चली गई तो अरथी रह गई, रथ का राजा चला गया। पर ये राजा आत्मा रूपी राजा पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियों का राजा है और कर्म इंद्रियों पर राज करने वाली राजा है तो रानी भी है। तो आत्मा जब चैतन्य कॉन्शियस में है तो उनके साथ तीनों ही शक्तियां कौशल्या सुमित्रा और कैकई, ये आत्मा की तीन शक्तियां हैं जिसमें सात्विक शक्ति भी है सतो प्रधान शक्ति भी है तो संपन्न शुद्ध दिव्य शक्ति आत्मा की शक्तियां हैं। और ये तीनों शक्तियां जो आत्मा शरीर सहित राज करती है तो कौशल्या दिव्य बुद्धि, जब बुद्धि दिव्य है तो आत्मा के जन्म देने वाली मां शरीर को राम को लाने वाली कौन? कौशल्या कुशल बुद्धि दिव्य बुद्धि। जब बुद्धि कुशल है दिव्य है तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, राम राज्य बराबर होगा। परंतु साथ में ये देखना है कि यह आत्मा की तीन शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार, सुमित्रा कैसी थी? मैत्री भाव। जिनकी रचना? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जिसका लक्ष्य एक परमात्मा के साथ ही है, लक्ष्य ये मन जो है इसका लक्ष्य है कि मुझे राम के साथ ही रहना है, राम राज लाना है, राम के साथ ही रहना है। जब लक्ष्य सामने है क्लियर है तो ऑटोमेटिकली त्याग तपस्या भाई का स्नेह हर प्रकार से एक सात्विक जीवन और सुमित शत्रुघ्न दूसरा। तो आत्मा को जब लक्ष्य परमात्मा के साथ हमारा है संबंध है, लक्ष्य परमात्मा के साथ ही रहने का है तो जो अंदर के शत्रु हैं जो विकार जिसको काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये पांच विकार कहें अथवा ये कहें कमी कमजोरी कहें, इन शत्रुओं का संहार करने वाला। और जिस शत्रुओं का संहार है इसका मतलब है दिव्य गुणों का उनका संस्कार और व्यवहार है, त्याग है तपस्या है और इतनी भावना है कि स्वराज मिलते हुए भी राज नहीं लिया। और यह हिस्ट्री है उस समय की, क्योंकि हमारे भारत में ही ऐसा राजा हुआ जिसने अपने बाप को कैद में रख दिया, भाइयों को कत्ल कर करके फिर सामने लेके आया कि कैसा कि अब तो मेरा तेरे लिए कोई राज करने वाला नहीं है, मुझे राज चाहिए। जब ऐसा समाज हो प्रजा कैसी होगी? तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर रचना रची है कि हमारे भारत की सभ्यता क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत में देव राज कैसा था, दिव्यता का राज कैसा था। तीसरी शक्ति फिर है व्यर्थ संकल्प मन मंथरा, दूसरे की उन्नति को देख करके, उन्नति नहीं चाहिए स्वार्थ चाहिए, तो क्वेश्चन उठाएगी क्यों क्या कई किसने कही, कब कही, क्या कही बन गई। मन और जब ये क्वेश्चन मार्क आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं, स्वार्थ का जब भाव आत्मा में आ गया तो फिर राम को ही राज मिला, पर नुकसान क्या हो गया, 14 साल राज डिले हो गया। किसने डिले किया? मंत्र और कहीं। तो इसीलिए अगर राम राज लाना है तो अपने आप को समझाना है कि मुझे फिर से यह राज कैसे स्थापन करना है। परिस्थिति आएंगी, विघ्न आएंगे। विश्वामित्र ने यज्ञ रचा, मारीच सुबाहु ने विघ्न डाले, अनेक प्रकार की ताड़का अथवा स्वरूप नखाया आई, विघ्न तो आएंगे, परंतु सत्यता क्या है, आत्मिक बल क्या चीज है। विघ्न आए परंतु आग बुझाने वाले बने, रावण की लंका को आग लगाया, किसने मदद की? मनुष्यात्माओं ने मदद की। पत्थर पर नाम लिखा, पत्थर तर गया, क्या मतलब है? तो जो बातें हमारे भारत की सभ्यता में, संस्कृति में है, उसके महत्व को समझ लिया, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं राम राज्य स्थापन करने आया हूं। तो इसीलिए फिर से भारत पर, सृष्टि पर राम राज होगा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज होगा। आज पूर्णमासी का दिन है, तो ऐसे पूर्णमासी के दिन श्री लक्ष्मी नारायण का राज लाएं, नारी लक्ष्मी बने, पुरुष नारायण बने। अगर हमको भारत को स्वर्ग बनाना है, घर घर को जंगल नहीं बनाना है, तो पहली बात है मन को बनाए मंदिर, मन को मंदिर बनाए, मन के अंदर मंत्र को समझाएं, विचारों को स्वच्छ, सतो प्रधान, कल्याणकारी, सुखदायी, दुखहर्ता बनाए, दाता बने, देवता बने। आपने स्वस्तिका का भाव समझा, तो वास्तव में स्वस्तिका, स्व मीन्स सेल्फ, अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है। और स्वस्तिका को ओम भी बनाते हैं, बिल्कुल ओम लिखेंगे या स्वस्तिका लिखेंगे, तो स्व के स्वरूप में स्थित होना है। और जब हम अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित होंगे तो अग्नि का काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि को बुझाने वाले होंगे, शीतलता का जल बरसाने वाले होंगे, दुआओं की वर्षा करने वाले, वरदानों की वर्षा करने वाले होंगे, दुखहर्ता सुखकर्ता बनेंगे। तो इसलिए जब आत्मिक स्थिति में हम स्थित हो और परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, तो मन मंदिर बन जाता है। और फिर जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अथवा अवगुण व्यर्थ वृत्तियां वो परिवर्तन हो गई, तो घर क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। रामराज लाना है तो मन को बनाए मंदिर, घर को बनाए आश्रम, सृष्टि बन जाएगी स्वर्ग। जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, रामराज यही लाना है, परंतु पहले हमको स्वयं का राजा बनना है। और राज जो परमात्मा सिखाते हैं, जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करें, मन वृत्ति को परिवर्तन करें और जीवन के रहस्य को समझकर इस ड्रामा में राज क्या है वो परमपिता परमात्मा से एक अधिकार प्राप्त हो जाता है, जब समझ मिलती है। तो समय की सीमा है, मैं इसी पर समाप्त करती हूँ। इसलिए राम राज को हमको ही लाना है और राज भी हमको ही करना है। तो ऐसे आप सब आत्मा को बहुत बहुत वेलकम है, ऐसा अतिंद्रिय सुख का झूला लेकर के जाओ। आज सवेरे शांति का झूला, प्रेम का झूला, पवित्रता का झूला, आनंद का झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला लेकर के जाओ तो आप फिर शीतलता की लहर मीडिया के द्वारा स्वयं सब जगह शांति फैलाने वाले, ठंडी हवा लाने वाले होंगे। राम राज आया कि आया, वेट कर रहा है। जब तक हम अपने कर्म इंद्रियों को समझें, अपने आप को समझें और पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आपसी स्नेह जोड़े, क्योंकि हम एक पिता परमात्मा की संतान है। ये राम राज की कहानी एक की नहीं है, हम सारे विश्व पर एक ही पिता परमात्मा की संतान है, हम भाई भाई है। तो सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, न केवल भारत को, सारे विश्व को स्वर्ग बनाए। ऐसे आप बनाने वाले देवी देवताओं की कुल को, देवी कुल वाली आत्मा को, देवी धर्म वाली आत्मा को बहुत बहुत इन एडवांस बधाई हो, ऐसी दुनिया आप लाने वाले। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। सार में कहूं तो सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं, क्यों ना अपने अंदर ही घूम लो। कितना सुंदर वर्णन आपने मन बुद्धि संस्कार रानियों का किया, कौशल्या, मंत्रा, केकई, सुमित्रा, सबका बहुत सुंदर वर्णन, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रण दे रही हूं कुमारी स्वामिनी एवं कुमारी हिमानी, जो कि मुंबई घाट के ऊपर से पधारी हैं। आप हमें अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा दिशा देंगी। सांसों की सरगम गाए स्वागतम, स्वागत फिर से आपका सबका। सांसों की सरगम गाए स्वागतम, स्वागतम।
बहुत शुक्रिया कुमारी सुमोनी स्वामिनी कुमारी हिमानी। और अब हम मीडिया को, आज के सम्मेलन को कहूं, कॉन्फ्रेंस को कहूं, जिन्होंने इंटरनेशनल बना दिया है, और वो है हमारे आदरणीय भ्राता निविल हॉजकिंसन, जो कि हमारे बीच बैठे हैं। ब्रदर निविल हॉजकिंसन, राइटर एंड जर्नलिस्ट कमिंग फ्रॉम ऑक्सफर्ड यूके, एंड ही इज वर्किंग ऑन मेडिकल जर्नलिज्म स्पेशली, लेटेस्ट बुक्स ऑन HIV एंड एड, एंड ही इज द मेन इम्पॉर्टेंट दैट ही इज राजयोगी सिंस लास्ट 40 इयर्स। सो आई वेलकम ब्रदर निविल हॉजकिंसन टू गिव हिज views on the subject.
Honourable Minister and respected speakers and delegates, I must begin by apologising for not speaking in Hindi. I do know a few words of Hindi. Swagadam, Om Shanti, and I really know the meaning of Om Shanti, not just as a greeting, but the real meaning. It took me a long time to learn. Sudesh Didi was one of my first teachers back in London more than 40 years ago. I was about halfway through my career as a journalist at the time and feeling a lot of stress because of actually finding it quite hard to maintain the lifestyle. Materialistic, very striving, quite a yuppie lifestyle. I don't know if you remember the expression yuppie, it meant materialistic, married, children, ambitious, ego-driven actually. Not from, not so much from unpleasantness, but from insecurity, because of not really knowing the true self. And then, between jobs, I had about 2 years while I was writing my first book, and I met the BKs in London, and I didn't understand their language of the soul and God. It had no part in my brain, which was full of science and medicine, my speciality in journalism, but the language of the heart spoke to me. I felt that they embodied some truth that was definitely missing in my life. And it had to do with love and respect and acceptance. And I felt it so strongly that I resolved that I would become a student with the BKs. And I've been studying the understandings that came through the founder now for the last 40 years. And my understanding now is that I truly am a soul who plays a role. I'm not the role who has a soul. This shift is simple, but for it to be real inside actually takes quite a lot of practice, depending on how strong the other ideas are in your head. The other thing is that our lives are full of so much information, so many stimuluses, so many demands on us that pull us into the world outside us, that even if you're brought up in a culture that understands the spirit, you can lose sight of the spirit because of being pulled so strongly into all the things of the everyday life. Especially in media work, it's very full of tension and stimulus. So within my career, I would say I can see how it fell into two halves: pre-Raj Yoga and post-Raj Yoga. My first years were that kind of ego-driven, successful because of wanting success, working very hard, but increasingly as I moved into my late 30s, feeling as if there must be more to life than this. And then I started to practice this meditation, the peace that comes when you step aside from the role to contemplate the inner being. And then in time, understanding that when I really am still inside, when I have really disengaged from the role, then the soul knows the supreme. The soul can draw power from that connection that Atambai spoke of so nicely last night. Connection, connection, connection. How that connection is what really renews you. Even the knowledge of the soul isn't enough. You have to be experiencing the soul and the stillness. The stillness allows you to make the connection. This is so transformational in life. So I'm actually a living example of the proof that what you've been hearing about from the speakers, that this change can happen, Ram Raj can come, a better world, a new social order is possible, but it really truly begins with the self. The self has to change its vision of itself, away from being so identified with the body, with your partner, with your children, your grandchildren in my case. All of that is lovely. There's no problem with any of that. There's no problem with possessions and positions and relationships. All of those are the beauty of life. But we mustn't identify with them so strongly. When we approach them from the basis of being a soul and a child of the Supreme, the Paramatma, when that becomes my reality, then, as you've been hearing, you become more giving in those roles. You become more giving, not needing from your partner, not needing from your boss at work, but instead, how can I help? How can I be more constructive in what I do? Some mention was made of the work that I did some years back. I was working at the London Sunday Times as their medical correspondent and reported the AIDS outbreak and the world panic about it conventionally. And then I came across some scientists. This was before the age of the internet, but some scientists, leading ones, including Nobel Prize winning scientists, had challenged the virus theory of AIDS. They said, there isn't a virus. This is a mistake. The government in America came under strong pressure to do something about AIDS, which was real. And this virus story got created and it went around the world and has caused a lot of distress. I didn't realize that at the time, but a few years later, in a different job, I was at the same newspaper but as their science correspondent, and I wrote a series of articles about the challenge to the HIV theory. This was very controversial. Most of my colleagues who had committed themselves to the fight against AIDS with the virus theory, most of them were very angry at it being questioned because there's that identification with what you have been writing previously. But because I was practicing this meditation, I was able to see, yes, I made a mistake previously. There is a strong argument that the HIV theory was wrong. More recently, I was retired. I had a long time in the profession. But then when COVID came along, I saw similar mistakes being made. COVID virus is real. It's genetically engineered. Definitely a product of science. And no matter how much there was an attempt to cover that up, it's gradually being understood. So I've also wrote quite a lot about COVID in hoping that some of the worst mistakes could be eased. Not many people listen when you challenge such a fear-mongering story as went across the world. I believe there were a lot of mistakes made. But again, one of the lessons that I learned, this was from Sudesh Didi also, one of her sayings was, light does not fight. It means that you, as reporters, you can inform people, put out the facts as you see them. That's good. Don't mind the criticism that may come. If you feel that what you're reporting is true, stay with it. But don't become angry or upset when there's rejection, because that weakens your ability to stay with the truth. This is also a strength that I've taken from my work, from the practice of Raja Yoga over these years. So I would say definitely for this new social order, the place to start is with the self. And it is possible, but it takes attention, it takes an awakening love for the divine, it takes the support of experienced yogi sisters who came out of India and who have inspired thousands across the world actually to take up the Brahma Kumaris lifestyle and the practice of Raja Yoga. There are many thousands in more than 120 countries now. So this is a gift from India to the world for which I'm very grateful. Om Shanti. Thank you.
Lot many thanks, Brother Neville. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपने हमें दिशा दी कि अगर हम आत्मिक भान में, आत्मिक स्थिति में रहें और परमात्मा की स्मृति रखें तो बहुत बातों से हम बच सकते हैं. हमारा जीवन देने वाला बन जाएगा बजाय लेने वाला. सहयोग देना, सहयोग बांटना, देने वाली स्थिति हमारी बन जाएगी और हम सदा खुश रह पाएंगे बजाय गुस्से के. आपने दो शब्द प्रयोग भी किए, लाइट रहना है, हल्के रहना है, संघर्ष में नहीं रखना है. आप अपनी बात रखें लेकिन संघर्ष में ना रहें. आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रण देना चाहूंगी हमारे मध्य बहुत अनुभवी और संस्था के साथ जुड़े हुए प्रोफेसर मान सिंह परमार जी विराजित हैं. आप पूर्व कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़. आपके लिए अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं कि आपके जीवन का ध्येय मिशन है शिक्षाविदों व मीडिया विशेषज्ञों की नवीन पौध तैयार करना. ये आपका मिशन है. आप सिर्फ कार्य नहीं करते हैं, एक तरह से ध्येय लक्ष्य बना करके चलते हैं. आपने मीडिया जगत में अपनी भौतिकता, बौद्धिकता, पैनी दृष्टि, प्रभावी संप्रेषण, दूरदर्शिता, कार्यकुशलता के जरिए अपनी एक अलग पहचान दी है, अलग बनाया है. बहुत से पुस्तकों का लेखन भी किया है, बहुत से अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं. मैं ज्यादा उसमें तो नहीं जाऊंगी लेकिन हाँ इतना जरूर बताना चाहूंगी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन कि जो पहली कमेटी बनी आप उसके चेयरपर्सन रहे, आपके ही नेतृत्व में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन विश्वविद्यालय का ये दर्जा प्राप्त हुआ। तो मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, आप आए, अपनी दिशा दें, विचार रखें। भ्राता प्रोफेसर मान सिंह परमार जी,
आज के कार्यक्रम में उपस्थित और आज के मुख्य अतिथि बाबूलाल जी खराड़ी, जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट होम डिफेंस डिपार्टमेंट राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, और आपने सुना बहुत ही एक स्वयंसेवक जिस तरह की बात कहता है, वो आदरणीय खराड़ी जी ने बहुत अच्छे ढंग से, अपने प्रभावी ढंग से, बहुत सरलता से, सहजता से कही। करुणा भाई, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, सरला जी, और हमारे यूके से पधारे लेखक और पत्रकार मित्र चंद्रकला बहन, और एक युवा बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से विशाल जेठवा, अच्छा ये टीवी कलाकार हैं, और सभागृह में सभी उपस्थित मेरे पत्रकार बंधुओं, आज का विषय बहुत अच्छा है। इसमें तीन बातें, तीन अलग अलग हिस्से में अगर हम देखें तो न्यू सोशल ऑर्डर, नई सामाजिक व्यवस्था, फिर उसके लिए दृष्टि और मूल्य क्या होने चाहिए, और तीसरा आता है फिर उसमें मीडिया की क्या भूमिका होगी। देखिए, पहले ये समझना होगा कि नई सामाजिक व्यवस्था है क्या, न्यू सोशल ऑर्डर है क्या। आप अगर पत्रकार बंधु इसको बहुत गहराई से नहीं समझेंगे तो उस पर लेखन कार्य करना, उस पर समाचार बनाना, उस पर आर्टिकल लिखना, उस पर संपादकी लिखना, उस पर टीवी प्रोग्राम कंडक्ट करना बहुत आसान नहीं है। तो हमारे देश की क्या सामाजिक व्यवस्था है उसको समझना बहुत जरूरी है, हमारे नेताओं को भी समझना बहुत जरूरी है, और पत्रकारों को समझना तो बहुत जरूरी है। देखिए, वैदिक काल की बात करें, सतयुग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, एक सामाजिक व्यवस्था हमारे यहाँ रही है और बहुत मजबूत सामाजिक व्यवस्था रही है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध रही है। आजादी के पहले क्या स्थिति थी, आजादी के बाद तुरंत क्या व्यवस्था थी, देश आजाद हुआ, देश में बड़ी बहुत सारी समस्याएं थी, कैसे उसको पूरा करेंगे, अंग्रेज छोड़कर के चले गए, उसके बाद में क्या स्थिति बनी। तो ऐसा है कि बहुत विस्तार में न जाते हुए हम सीधे आते हैं, इसके बाद में हमारा संविधान बना, या यूं कहिए कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो तीन बातों पर बहुत कुछ निर्भर करती है, कि एक तो है राजतंत्र, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, दूसरा है देश का अर्थतंत्र क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, और तीसरा है देश का एजुकेशन क्या है। ये तीन बात नई सामाजिक व्यवस्था को के निर्माण में बहुत आवश्यक है और इसको समझना बहुत जरूरी है। अब हम राजतंत्र की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की करें, अभी थोड़ी देर पहले यहां राम राज्य की बात भी हो रही थी। देखिए, राम राज्य तो कैसा था आप सब जानते हैं, केवल मैं एक चौपाई के साथ में अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और फिर हम संविधान पर आएंगे। एक चौपाई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, जीता हूं मन ही सुनई अस रामचंद्र के राज। तीन बातें हैं, पहली बात तो जो हम यहां समानता की, भेदभाव की बात करते हैं, उस जमाने में राम राज्य में भेद नाम का शब्द नहीं था, लोगों में भेद नहीं करते थे। भेद कहां होता था, जो म्यूजिशियन होते थे, जो संगीतकार होते थे, सुर ताल में भेद करते थे, केवल यहां तक सीमित था ये शब्द, भेद शब्द राम राज्य में नहीं होता था। दूसरा, जीतो शब्द, किसी को दूसरे को जीतना नहीं, दूसरे के मन को जीतना, ये भावना हुआ करती थी। और एक शब्द है दंड, हम दंड का शब्द किसी को पनिशमेंट देने से लेते हैं, उस समय दंड का कंसेप्ट, दंड की अवधारणा नहीं थी, परंतु क्या था, दंड केवल ऋषि मुनियों के हाथ में रहने वाला दंड हुआ करता था। तो ऐसा था राम राज्य। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह, दैहिक देवी के भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहू व्यापा। देखिए ऐसा राम राज्य आएगा भारत में, आप सोचते हैं, अभी शिवानी बहन कह रही थी, आपसे पूछ रही थी कि कैसे आएगा, संकल्प लेना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत शुत नीति, मर्यादा में रहकर अपना काम करना, एक नियंत्रण, एक स्वनियंत्रण, एक आचार संहिता, मीडिया की आचार संहिता उसमें सब लोग रह करके और काम करते थे। और भी बहुत सारी बातें हैं। अब मैं आता हूं भारतीय संविधान की बात करते हैं हम। आप सब लोग जानते हैं, सारे पत्रकार लोग हैं, आपने भारतीय संविधान का प्रस्तावना प्रीएम्बल पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने भारतीय संविधान का प्रीएम्बल। एक्चुअल में उस वो पूरे नवीन सामाजिक व्यवस्था का आधार है, नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण का प्रमुख अंग है, वही हमें हमारी नव सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। मैं उसको पढ़ करके आपको बताता हूं और समझा बताने की कोशिश करता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब सॉवरेंटी, हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं, हम बिल्कुल संप्रभु हैं। दूसरा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, दो शब्दों का उपयोग किया गया। यहां किसी सरकार का राजधर्म नहीं होता है, मतलब कोई धर्म के आधार पर सरकार नहीं चलती, बल्कि सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। दूसरा समाजवाद शब्द का यूज किया गया, हालांकि ये अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है, पर समाजवाद का मतलब आर्थिक समानता लाना, राजनीतिक समानता लाना, ये प्रयास करना चाहिए। आप प्रीएम्बल के एक एक शब्द को मोती जैसा मान करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है वो, पूरी राजनीति का आधार है वो, पूरी नवीन सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का आधार स्तंभ है हमारा संविधान का प्रीएम्बल। और दूसरे देखिए, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों न्याय मिल गए तो रामराज्य आ जाएगा भाई। प्रयास करें, संकल्प लें, लक्ष्य रखें हमारा सामने। और फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता। आप सब यहां मीडिया के लोग बैठे हैं, आपका पूरा जो आप बोलते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं, टीवी पर बोलते हैं, वो सारा का सारा ही इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में समाहित है। संविधान में कोई प्रेस की स्वतंत्रता अलग से नहीं दी गई है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में उपयोग ही नहीं किया गया है, एक्सप्रेशन शब्द है, अभिव्यक्ति शब्द है। तो अभिव्यक्ति किसकी, बोलने की अभिव्यक्ति, हम कौन से धर्म को माने, उपासना करें, उसकी पूरी स्वतंत्रता है हमको। फिर इसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अवसर की समानता, किसी तरह का भेदभाव नहीं, इक्वालिटी होना चाहिए समाज में, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, नौकरी में अवसर मिले, राजनीति में अवसर मिले, आर्थिक क्षेत्र में अवसर मिले, हर फील्ड में अवसर में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति की गरिमा, ये भी सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर व्यक्ति की गरिमा नहीं रहेगी, अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहेगी, ये यदि व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए फ्रीडम नहीं मिलेगी, तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्ति का विकास हो तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश नई सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र की एकता, अखंडता, और इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है जिसको कहते हैं बंधुत्व, बंधुता, फ्रेटर्निटी, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, पूरा विश्व हमारा हिस्सा है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व को हम अपना मानते हैं, ये हमारी सोच, जिस सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं हम लोग। तो ऐसा हमारा जो भारत का संविधान है, उसका जो भी कहिए, राजतंत्र कहिए, राज्य व्यवस्था कहिए, सामाजिक व्यवस्था कहिए, उसका आधार स्तंभ है। और हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसमें सारी तरीके स्वतंत्रता दी गई है, नागरिक कर्तव्य दिए गए हैं, अनिवार्य शिक्षा दी गई है। अब अनिवार्य शिक्षा कितनी कैसी मिलती है, ये अलग मुद्दा है। तो तो ये प्रमुख बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रीएम्बल को समझे, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, नई सामाजिक व्यवस्था को समझे, उसमें क्या क्या प्रमुख फीचर्स हैं उसके ऊपर विचार करें, तो हमें लिखने में, हमें हमारे नेताओं, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको जगाने में ये सारी चीजें काम आएंगी। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है अर्थतंत्र। इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं समझे तो नई सामाजिक व्यवस्था कभी आ नहीं सकती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मंत्री जी यहां बैठे हैं, गांव से शहर की ओर लोग भाग रहे हैं, चाहे वो मजदूरी करे, चपरासी की नौकरी करे, क्लर्क बने। सरकार की योजना ऐसी बनना चाहिए कि शहर से लोग गांव की ओर जाएं। ऐसी योजना नहीं बनाएंगे तब तक नवीन सामाजिक व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि शहरों में आप मुंबई चले जाइए ऐसा लगता है जैसे पक्षी रहते हो घोंसले में, ऐसा लगता है जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब लोग बाहर ऐसे निकल रहे हैं जैसे कोई पक्षी उड़ करके निकल रहे हों। तो भारत कृषि प्रधान देश होने के बाद भी यहां पर एग्रीकल्चर का एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं। सारी यूनिवर्सिटी बनी, सब कुछ हुआ, पर आज भी ग्राम सेवक गांव में जाकर के किसानों को नहीं समझाता। तो अर्थतंत्र हमारा कृषि प्रधान रहा है, औद्योगिकरण भी हुआ, शहरीकरण भी हुआ, उसके दुष्परिणाम भी हमने देखे। ये मीडिया किस तरह से इसको लेता है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं ये बात बता रहा हूं आपको, शहरीकरण, औद्योगिकरण जिस इस अंधी गति से शुरू हुआ है या जो आगे बढ़ रहा है, हम विकसित देशों की श्रेणी में आने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु उसके दुष्परिणाम लंबे समय पर हमको झेलना पड़ेंगे। और तीसरा प्रमुख मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा, नई सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो नवीन सामाजिक व्यवस्था नहीं आ सकती। नई सामाजिक व्यवस्था शिक्षा को भी दिशा देती है। तो हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन कैसा होना चाहिए? आज हमारे, मैं तो मध्य प्रदेश की बात करता हूं, सरकारी स्कूलों में बच्चे आते ही नहीं पढ़ने के लिए, बिल्कुल नहीं आते हैं। क्या कंटेंट पढ़ाते हैं वो भी भगवान मालिक है। जो टीचर पढ़ाती है उसको कितनी इंग्लिश आती है, कितनी हिंदी आती है, कितना दूसरा नॉलेज है। मैं तो कॉलेज के प्रोफेसरों का मैंने ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स खूब कराया, तब मुझे जांचने समझने का मौका मिला कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं प्रोफेसर, उनको भी ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार, मेरा ये मानना है कि शिक्षा ही नवीन सामाजिक व्यवस्था अगर देश में लाना है तो शिक्षा के ऊपर हमको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार को भी सोचना पड़ेगा, सरकार में भी जो लोग बैठे हैं, कोई मैं नहीं समझता बहुत हो तो होते हैं समझदार, पर बहुत विद्वान होते ऐसा नहीं मानते। कई ऐसे IAS मिलेंगे जिनको ये नहीं पता कि गांव क्या होता, कभी देखा नहीं होगा उन्होंने। तो ये देश को अगर आगे बढ़ाना है तो गांव की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद इन सब चीजों को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, रोल ऑफ मीडिया, मीडिया क्या कर रहा है भाई? मीडिया तो कॉरपोरेट हाउस के पास चला गया पूरा मीडिया। आप बताइए कहां मीडिया है? सोशल मीडिया की स्थिति यह है, मतलब ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक ऐसा प्राणी हो गया है सोशल मीडिया जो अनियंत्रित है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। कौन सी सामाजिक व्यवस्था, कौन सा देश, जो मर्जी हो कंटेंट डालते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, फेक न्यूज डालते हैं। कुछ बातें अच्छी हैं, एक आम नागरिक को भी पत्रकार बनने की उसने एक सुविधा दी है, एक सिटीजन जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने का मौका दिया है, परंतु अभी मीडिया को भी इस नवीन सामाजिक व्यवस्था में भागीदार होना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ की भूमिका को उसके बखूबी निभाना होगा। आजादी हमने प्राप्त की तो निश्चित रूप से मीडिया की अहम भूमिका थी, आजादी के बाद देश को विकास की ओर ले जाना, उसमें भी मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब समय आ गया है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए क्या प्रयास करें, आर्थिक रूप से कैसे हम विश्व गुरु बने, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विश्व गुरु बने, मतलब शीर्ष पर आए हम, इस पर मीडिया को काम करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है, संपादक नाम की संस्था खत्म हो गई, कोई संपादक है ही नहीं, अब संपादक है तो उसको काम करने नहीं दिया जाता है। तो मीडिया में किस तरह से काम कर सकते हैं जो हमारे पत्रकार भाई हैं, उनको कुछ ऐसा अपने रिपोर्ट में, अपने समाचार में, अपने एडिटोरियल में ऐसा कंटेंट शामिल करना चाहिए जो देश की नई सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मजबूती प्रदान करें। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय बहुत अच्छा प्रयास करती है, साल में दो बार यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस करती है, देश भर के हमारे पत्रकार बंधु आते हैं। ये बहुत ही एक पुण्य का काम है कि जो मूल्यों की जो पत्रकारिता है, मूल्य आधारित पत्रकारिता है, वैल्यू बेस्ड मीडिया है, इसको पत्रकार बंधुओं तक पहुंचा रहे हैं। आप सब जाकर के देश के विकास में, देश की नई सामाजिक व्यवस्था में कैसे भागीदार हो सकते हैं, इस पर चिंतन करें, मनन करें और देश को आगे बढ़ाएं और नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया परमार जी का, आपने बहुत सुंदर विधि से दिशा दी हर क्षेत्र में कैसे मीडिया को रोल निभाना है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, हमारे बीच विराजित हमारे मंत्री महोदय हमारे बीच से जाना चाहेंगे, तो मेरा अनुरोध रहेगा करुणाबाई जी से कि आप इन्हें ईश्वरीय सौगात प्रदान करेंगे। आदरणीय करुणाबाई जी से अनुरोध है ईश्वरीय सौगात प्रदान करें। साथ ही साथ बहनों से अनुरोध है कि हमारे बीच भ्राता विशाल जेठवा जी पधार चुके हैं, उनका भी अभिनंदन। हम सब तालियों के माध्यम से मंत्री महोदय का धन्यवाद करेंगे। भ्राता बाबूलाल खराड़ी जी मंत्री, आपको बाबा के स्थान से घर से ईश्वरीय सौगात प्रसाद भ्राता करुणा जी दे रहे हैं और हम कहेंगे आते रहिए, ये आपका अपना घर है, जरूर आते रहिए, हमें अच्छा लगेगा। भ्राता विशाल जेठवा जी का बहने स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। हम सब तालियों के माध्यम से आपका सम्मान करते हैं। भ्राता विशाल जेठवा जी, आप फिल्म एवं टीवी एक्टर मुंबई से हैं, आपने मारदानी फिल्म में भी काम किया है, रानी मुखर्जी एवं काजोल, आमिर खान, वेंकी, सालिम सबके साथ आपने मिलकर काम किया है, आपको दो बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी आमंत्रित किया गया है, एक बार IIFA अवार्ड के लिए भी आपका नॉमिनेशन हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है आए और दिशा प्रदान करें। भ्राता विशाल जेठवा जी
नमस्ते, ओम शांति आप सभी लोगों को। यहाँ पधारे सभी लोगों को मेरा प्रणाम, स्टेज पे उपस्थित सारे अतिथिगणों को मेरा नमन, और माउंट आबू से जुड़े सभी जो भी सेवा कर रहे हैं इतने सालों से, सारी सिस्टर्स, सारे ब्रदर्स जो निस्वार्थ भाव से इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हम सभी लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने में, और आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि थैंक यू, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं भी ऐसे महान हस्तियों के साथ एक चेयर पे, साथ में मेरा भी नाम हो और मैं भी इन लोगों के साथ बैठ सकूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आज सुबह नॉर्मली तो हम बहुत लेट उठते हैं, बट आज सुबह 3:30 बजे से हम लोग उठे हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आके रूम में जाए बिना मैं स्टेज पे आ गया, और मुझे बहुत ही थकावट हो रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट सिर्फ कहने के लिए नहीं, बट मुझे सचमुच ऐसा फील हुआ कि मेरी आधी से ज़्यादा थकान कम हो गई जब मैं यहाँ पे एंटर किया और मैं यहाँ पे बैठा। तो इस जगह की ये पवित्रता है और ये प्योरिटी है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं यहाँ आया। अब मैं जब रास्ते में आ रहा था तो संजय पोरवाल जी जो हमारे साथ आए हैं, थैंक यू आपने मुझे यहाँ बुलाया, और वो कह रहे थे कि आप गाना गुनगुना देना थोड़ा, बॉलीवुड से आए हो तो लोगों को अच्छा लगेगा, तो कुछ ऐसी लाइन जो मैं मर्दानी फिल्म में जब मैं कास्ट हो रहा था तो मैं एक एक गाना सुनता था, बॉलीवुड का है, मैं उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप सभी लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट फिर भी मेरे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुकाते रहना। हाँ हो, अरे भेड़ की हाँ हाँ कार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे दंगल दंगल। तो ये एक ऐसी चीज थी जो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, और सभी मीडिया पर्सन जो यहाँ पे उपस्थित है आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मर्दानी में जो सनी है, सलाम वेंकी में जो वेंकी है, IB71 में जो टेररिस्ट है, महाराणा प्रताप में जो अकबर बना था, उस कैरेक्टर को आप विशाल के तौर पे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये पर्सन जो आप कैरेक्टर में देखते हो सिर्फ वही नहीं है, रियल में ऐसा भी कोई पर्सन है जो ऐसी बातें करता है। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, ओम शांति।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेर की एक दहाड़ काफी है। हम सब यहाँ पर राजयोगी कहे बाबा के स्थान पर आए हैं, सचमुच आंतरिक शुद्धि के साथ साथ कार्य करके हम आगे बढ़ते रहते हैं, और यही सच्ची दहाड़ काम करती है। मैं अब आगे बढ़कर बहनों से पुनः अनुरोध कर रही हूँ, हमारे बीच पधार चुके हैं ब्रदर के श्रीनिवासन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सम्मान। बहनों से अनुरोध है कि आप इनका बैच पुष्पों के द्वारा स्वागत और सम्मान करेंगे। हमारे बीच भ्राता के श्रीनिवासन जी पधार चुके हैं, तो आपका स्वागत और सम्मान है मंच पर, और हम आपका तालियों के माध्यम से सम्मान करते हैं। और आप प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, आप अभी अपना किताब का विमोचन करवाएंगे, आज आपकी किताब का विमोचन होगा, और उसके लिए आप हमें दो शब्द कहेंगे। कल आपका वक्तव्य रहेगा, तो हम आपका कल वक्तव्य सुनेंगे, आज आप दो शब्द कुछ कहेंगे, तो मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा आप मंच पर आएंगे और किताब का विमोचन कराएंगे। आप प्रीसेंस के पब्लिशर एवं मैनेजिंग एडिटर हैं, आप आगे आए किताब का विमोचन कराएंगे, आगे आएंगे। डिजिटल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आप चेयरमैन एंड मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर एंड चेयरमैन, संसद रत्न अवार्ड कमेटी के हैं आप, तो मेरा आपसे अनुरोध है आप मंच पर आगे आए और अपनी किताब का विमोचन भी कराएं और दो शब्द कहें।
नाउ वी विल बी रिलीजिंग अ बुक, a small book of 70 pages, handbook for journalists regarding the AI tools and techniques. I am requesting our Karuna Bhai to kindly release. He has given already the foreword. This e-book, you can download it. And I have also requested Sarala Ji, Bahen Ji, to share in the groups. This will be having a lot of information about how we can use AI for journalism purposes, one for background material, searching for background material, and for writing, and for editing, and proofreading, and what are the cautions that we have to take, all are explained in this. And tomorrow I am also going to take a session on this, and I am going to give a live demonstration. I am grateful to Brahmakumari's media wing for permitting us to release this book in this August forum. The book is authored by Deepthi Kumar and a very veteran digital media expert. She is from US. She has a very rich experience and it is published by Prime Point Foundation, downloadable free of cost. Om Shanti.
मंच से अनुरोध है बुक को रिलीज करने में सहयोग करेंगे बुक को रिलीज करने में सहयोग करेंगे और ये बहुत सुंदर बुक जिसके बारे में जिक्र किया गया ये बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कैसे हम कार्य में प्रयोग कर सकते हैं बहुत सुंदर किताब है और छोटी सी है जिसको जो आपको प्रेरणा देती रहेगी आगे कार्य में मदद करेगी बहुत बहुत शुक्रिया मंच का और अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे बीच से मंत्री महोदय इजाजत ले रहे हैं मैं आमंत्रण कर रही हूं उस शख्सियत को जो मीडिया विंग के चेयरपर्सन है और आप चीफ ऑफ मल्टीमीडिया ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर के साथ ही साथ मीडिया स्पोक्स पर्सन चैनल हेड अवेकनिंग टीवी पीस ऑफ माइंड पीस ऑफ म्यूजिक टीवी सेक्रेटरी रेडियो मधुबन सेक्रेटरी आरईआरएफ राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन मेंबर ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड हेडक्वार्टर सिर्फ एक ही शब्द आपके लिए कहना चाहती हूं अब आप दृढ़ संकल्प के धनी हैं आध्यात्म के क्षेत्र में आपने लंबी यात्रा की है और साथ ही साथ सदा मुस्कुराते हुए सहजता से आगे बढ़ना बढ़ाना ये आपकी विशेषता है आप जो सोच लेते हैं जो ठान लेते हैं वो आप सहजता से कर पाते हैं बहुत बड़ी विशेषता है आपका द्वार सदा खुला रहता है कोई भी मिलने आए कभी भी कोई समस्या लेके आए आप सदा कहते हैं हो जाएगा ठीक हो जाएगा बाबा बैठे हैं ठीक हो जाएगा तो मेरा आपसे अनुरोध है आज आप दिशा दें
सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा के हम सभी संतान जो आज यहाँ एक पवित्र स्थान में एकत्रित हुए हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हमारे दादियों का एक ही आशा है जो इस समाज को फिर से राम राज्य करने का जो कार्य है उसमें पत्रकारों को भी किस तरह से हम सहयोगी बन सकते हैं तो इस कार्य को आप सभी आगे लाएंगे करेंगे और किस तरह से ईश्वरी विश्वविद्यालय कर रहे हैं तो वो भी आप लोग प्रैक्टिकली यहाँ देखेंगे जिसको हम कहते हैं कि भाई भारत में फिर से विश्व गुरु का पार्ट बजाने का समय आ चुका है तो वो प्रैक्टिकली आपको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 140 देशों में हमारे भारत के गांव-गांव में जो शिक्षा इस देश में था जिसको गुरुकुल शिक्षा कहा जाता था तो फिर से इन्होंने स्थापना किए है और वो किस तरह से साइलेंटली हो रहा है क्योंकि राम राज्य की जो सनातन धर्म का जो जीवन था तो वो क्या है वो कौन सा संस्कार है जिनको हम कहते हैं कि वैसे पढ़ाई में हमको कहते थे कि भाई बंदर से मनुष्य बन गया परंतु भारत के लिए ऐसे हम नहीं कहते हैं कि भारत में हम अपनी देवी देवताओं का चित्र हम सबके घर में है तो फिर से वापस ऐसी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे ईश्वर कर रहा है वो प्रैक्टिकली आप यहाँ 3-4 दिन में देखेंगे तो इसीलिए आप सबको वेलकम कर रहा हूँ ये आपका घर है परमात्मा का घर है यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि भाई ये हमारा है तो ये हम सब का ईश्वर का घर है। मैं आप सबको स्वागत करता हूं और तीन दिन आप अपना व्यस्त जीवन से यहां आने की जो प्रयास किया और पहुंचे हैं, तो आपको ईश्वर पूर्ण रूप से आपकी इच्छाओं को सफल करा दे, प्राप्त करा दे, यही आशा करते हुए मैं दो शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी, आपने तो गागर में सागर भर दिया कि ईश्वर आपकी सर्व इच्छाएं पूरी करे, आपके मन में जो भी कामनाएं हैं वो सब पूर्ण हो, और यहाँ जो शिक्षा दी जाती है उसको समझें, देखें। मेरा आपसे पुनः एक अनुरोध रहेगा आदरणीय करुणा भाई जी का के लिए कि मंच पर विराजित हमारे सभी अनुभवी जनों को ईश्वरीय सौगात प्रदान करेंगे। मेरा बहनों से अनुरोध है कि ईश्वरीय सौगात एवं प्रसाद आगे लेकर के आएंगे और भ्राता करुणा जी सबको ईश्वरीय सौगात भेंट करेंगे। हमारे आदरणीय भ्राता करुणा जी परमार साहब को ईश्वरीय भेंट प्रदान कर रहे हैं, और मेरा तब बीच में अनुरोध रहेगा चंदा बेन से कि वो आज के आगे के कार्यक्रमों की हमें सूचना प्रदान करेंगी। चंदा बहन
जी, आज शाम को 4 से 6 बजे आप सबका प्लानरी सेशन 1 इसी हॉल में रहेगा, 4 से 6 बजे तक, और 6:30 बजे शिवानी बहन आपका सेशन लेंगी, मैनेज वर्क प्रेशर विद प्लेजर। 6:30 से 7:45 शिवानी बहन का क्लास रहेगा, 9:45 से 10 बजे आप सबके लिए बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, और कल आप सबके लिए साइट सीइंग का प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम बुकलेट में आप देख सकते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है आज ही साइट सीइंग ऑफिस में जाकर अपनी बुकिंग जरूर करवा दें, और पार्टिसिपेशन कल लंच के बाद आप सबके लिए साइट सीइंग है, तो उसकी बुकिंग के लिए आज ही साइट सीइंग ऑफिस में आप जरूर नाम नोट करा दें, और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपना फॉर्म भर कर दें जिसमें डिटेल स्लिप है, आप अपने डिटेल्स भर देंगे तो आप अपना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं।
और अब हम 2 मिनट प्रभु स्मृति में बैठकर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, ये सत्र यहीं समाप्त होगा, लेकिन सबसे अनुरोध है कि 2 मिनट और सहयोग देंगे, बैठे रहेंगे, प्रभु स्मृति में बैठेंगे, साइलेंस में।